आगे सबक देखिए भाई, बाबु इत्की अहदिल अब्दैन वमन कान लहू सलासतु अबुदिन दखल अलैहि स्नानि फकाल अहदुकुमा हुर्रुन ثم خرج واحد ودخل آخر فقال أحدكما حر ثم مات ولم يبين عتق من الذي أعيد عليه القول ثلاثة أرباع ونصف كل واحد من الآخرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله تعالى كذلك إلا في العبد الآخر فإنه يعتق ربعه. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے اور ان دونوں میں سے ایک کا یہ گمان ہے کہ یہ میرے شریک کی ام ولد ہے اور وہ شریک آخر اس بات کا انکار کرتا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ باندی ایک دن موقوف رہے گی یعنی کسی کی خدمت نہیں کرے گی اور ایک دن یہ منکر کی خدمت کرے گی, جبکہ وہ جو مقر ہے وہ اس باندی سے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے خود اعتراف کیا ہے, اقرار کیا ہے کہ یہ میری شریک کی ام ولد ہے. تو گویا اس نے یہ اقرار کر لیا کہ میرا اس باندی کی خدمت میں کوئی حق نہیں ہے, لہذا باندی اس کی خدمت نہیں کرے گی بھائی. اور یہ جو مقر ہے یہ اس منکر سے ضمان بھی نہیں لے سکتا, اس لیے کیونکہ منکر تو انکار کر رہا ہے اس باندی کے ام ولد ہونے کا. البتہ یہ مقر جو ہے پھر اس باندی سے سعی کروا سکتا ہے کہ یہ باندی ایک دن تو منکر کی خدمت کر رہی ہے اور ایک دن کام کاج کرے اور اس مقر کے حصے کے پیسے لا کر اس کو ادا کرے. یہ امام صاحب کے نزدیک ہے, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو مقر نے جب اقرار کیا اس باندی کے ام ولد ہونے کا اپنے شریک کے لیے, تو شریک کے انکار کرنے سے مقر کا یہ اقرار خود اسی کے اوپر پلٹ کر آ گیا اور یہ اسی کی ام ولد بن گئی. تو اب یہ اس باندی کو بیچ بھی نہیں سکتا اور اس سے سعی بھی نہیں کروا سکتا کیونکہ یہ اس کی ام ولد بن گئی ہے. یہ مقر اس باندی سے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ اس کا گمان تو یہ ہے کہ یہ میرے شریک کی ام ولد ہے, اور وہ جو شریک ہے یعنی منکر وہ بھی اس باندی سے خدمت نہیں لے سکتا کیونکہ یہ اب مقر کی ام ولد بن گئی ہے, اور نیز وہ منکر جو ہے اس مقر سے ضمان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ مقر نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ام ولد ہے, اس نے تو کہا تھا کہ یہ میرے شریک کی ام ولد ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اقرار پلٹ کر خود مقر پر ہی آ گیا, لیکن بہرحال مقر نے خود تو اقرار نہیں کیا کہ یہ میری ام ولد ہے, لہذا منکر اس مقر سے ضمان بھی نہیں لے سکتا. تو منکر باندی سے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور مقر سے ضمان بھی نہیں لے سکتا, البتہ باندی سے سعی کروا سکتا ہے کیونکہ منکر کے حصے کی مالیت باندی میں بند ہو گئی ہے. تو باندی سعی کرے گی, کام کاج کرے گی اور منکر کے حصے کی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جائے گی. صاحبین فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے نصرانی کی یعنی عیسائی کی ام ولد جب وہ مسلمان ہو جائے تو اب وہ عیسائی کے تحت نہیں رہ سکتی, تو اس سے بالاتفاق سعی کروائی جائے گی ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک. یہ جو عیسائی کی ام ولد ہے جو مسلمان ہوئی ہے یہ سعی کرے گی اور اپنی قیمت اپنے عیسائی مالک کو ادا کرے گی اور آزاد ہو جائے گی. تو جیسے اس مسئلے کے اندر ام ولد سے سعی کروائی جا رہی ہے, اسی طرح یہاں اس مسئلے کے اندر یہ باندی مقر کی ام ولد بن گئی لیکن پھر بھی اس سے سعی کروائی جائے گی اور یہ سعی کر کے منکر کا حصہ ادا کر کے آزاد ہو جائے گی. جبکہ اس کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں कि ये जो बांदी है ये मुनकिर की एक दिन खिदमत करेगी और एक दिन मौकूफ रहेगी, किसी की खिदमत नहीं करेगी। वजह इसकी ये है कि मुकिर ने जो इकरार किया है कि ये मेरे शरीक की उम्मे वलद है, या तो उसने सच कहा है या झूठ कहा है। अगर उसने सच कहा है तो फिर तो इस बांदी की सारी खिदमत मुनकिर के लिए हो जाएगी, क्योंकि वो इसकी उम्मे वलद है भाई। और अगर ये मुकिर ने झूठ कहा है तो फिर इस सूरत में मुनकिर के लिए बांदी की निस्फ खिदमत होगी, क्योंकि बांदी में दोनों शरीक हैं। तो मालूम हुआ मुनकिर के लिए बांदी की निस्फ खिदमत का होना तो यकीनी है, तो हम उसी निस्फ खिदमत का फैसला कर देंगे उस मुनकिर के लिए कि बांदी एक दिन उस मुनकिर की खिदमत करेगी और एक दिन मौकूफ रहेगी। जबकि ये जो मुकिर है ये बांदी से खिदमत भी नहीं ले सकता और बांदी से साई भी नहीं करवा सकता, इसलिए क्योंकि जब इसने इकरार कर लिया कि ये मेरे शरीक की उम्मे वलद है, तो इसने इकरार कर लिया कि इस बांदी की खिदमत में मेरा कोई हक नहीं है, और नीज उसने इकरार कर लिया कि मेरा हक अपने शरीक से जमान लेना है, मैं इस बांदी से साई नहीं करवा सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो शरीकों में से एक शरीक बांदी को उम्मे वलद बना दे तो उसको दूसरे को जमान देना पड़ता है, और ये जमाने मुआवजा है, जमाने तमल्लुक है, क्योंकि ये मुस्तौलिद जो है, ये जो उम्मे वलद बनाने वाला है, ये सारी बांदी का मालिक बन गया, अपने शरीक के हिस्से का भी मालिक बन गया। जब उसके हिस्से का भी मालिक बन गया तो अब इसको जमान देना पड़ेगा, और यह हर हाल में देना पड़ेगा क्योंकि यह जमाने मुआवजा है, चाहे ये मुस्तौलिद मालदार हो और चाहे तंगदस्त हो। तो लिहाजा यहां पर भी जब मुकिर ने इकरार किया कि मेरे शरीक ने इस बांदी को उम्मे वलद बनाया है, तो गोया उसने इकरार कर लिया कि बांदी की खिदमत में भी मेरा कोई हक नहीं और बांदी से साई करवाने में भी मेरा कोई हक नहीं, मैं सिर्फ जमान का हकदार हूं, इस शरीक से मुझे जमान दिलवाया जाए भाई। लेकिन मुनकिर तो उम्मे वलद बनाने का इनकार कर रहा है, लिहाजा उसे जमान भी नहीं लिया जा सकता। और साहिबैन ने कहा था कि ये मुकिर का इकरार उसी के ऊपर पलट कर आ जाएगा, तो साहिबैन ने इस मसले को कियास किया था बै के मसले पर, कि अगर एक मुश्तरी जो है बै के बाद दावा कर दे कि बाय ने मेरे इस गुलाम को, यानी मबीआ जो गुलाम है, बाय ने इस मबीए को बै से पहले ही आजाद कर दिया था और बाय इस बात का इनकार कर रहा है, तो हमारे अइमा फरमाते हैं कि ये एताक जो है ये मुश्तरी की तरफ पलट कर आ जाएगा और यूं समझा जाएगा कि मुश्तरी ने इस गुलाम को आजाद कर दिया है। तो साहिबैन फरमाते हैं जैसे वहां पर मुश्तरी का इकरार उसी पर पलट कर आ गया था, तो इस उम्मे वलद के मसले के अंदर भी इस मुकिर का इकरार इसी पर पलट कर आ जाएगा। तो इमाम साहब उसका जवाब देते हैं कि नहीं, आप इस बांदी के मसले को बै के मसले पर कियास नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो इस तरह के यहां पर जब उम्मे वलद होने का इकरार किया कि ये बांदी मेरे शरीक की उम्मे वलद है, तो उम्मे वलद होने के इकरार के साथ नसब का इकरार भी आ गया, गोया वो मुकिर ने इकरार कर लिया कि ये जो इस बांदी का बच्चा है ये मेरा नहीं है बल्कि मेरे शरीक का बच्चा है। तो अब अगर ये करार दिया जाए कि मुकिर का इकरार पलट कर मुकिर पर ही आ गया है, तो फिर तो इस बांदी को मुकिर की उम्मे वलद करार देना पड़ेगा और ये इस बच्चे को मुकिर का बच्चा करार देना पड़ेगा, हालांकि ये खुद इकरार कर चुका है ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरे शरीक का बच्चा है। और इकरार भी नसब लाजिम होता है, वो रद्द करने से भी रद्द नहीं होता, लिहाजा मुकिर जब एक दफा इकरार कर चुका है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो अब इस बच्चे का नसब मुकिर से साबित नहीं हो सकता, अब ये बांदी मुकिर की उम्मे वलद नहीं हो सकती भाई। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा आपका इस बांदी के मसले को बै के मसले पर कियास करना सही नहीं। और उसके बाद साहिब हिदाया ने दूसरा मसला जिक्र फरमाया था कि एक उम्मे वलद है, दो आदमी उसके अंदर शरीक हैं, और सूरत उसकी ये कि दो आदमियों के दरमियान एक बांदी मुश्तरका थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और दोनों में से हर एक ने दावा कर दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो अब अगर एक पहले दावा करता तो बच्चे का नसब उससे साबित हो जाता, लेकिन दोनों ने इकट्ठा दावा किया है तो अब यहां तरजीह की कोई गुंजाइश नहीं, लिहाजा इस बच्चे को दोनों का बच्चा करार दिया जाएगा। मैंने बतलाया कि हकीकत में तो यह एक का बच्चा है लेकिन यहां तरजीह की कोई सूरत ही नहीं है, लिहाजा इसको दोनों का बच्चा करार दिया जाएगा और यह दोनों की उम्र वलद हो जाएगी। या मैंने दूसरी सूरत बतलाई थी कि इकट्ठा इकरार तो नहीं किया लेकिन एक ने एक मजलिस में इकरार किया जब उसको बच्चे की खबर मिली और दूसरे ने दूसरी मजलिस में इकरार किया कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन यहां पता नहीं चल सकता कि किसने पहले दावा किया है और किसने बाद में दावा किया है, तो इसको इकट्ठा ही शुमार किया जाएगा, तो ये दोनों का बच्चा शुमार होगा क्योंकि तरजीह की कोई सूरत नहीं है भाई। तो ये बांदी जो है दो आदमियों की मुश्तरका उम्मे वलद बन गई। तो इन दोनों में से एक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया और इस हाल में कि यह मुअतिक जो है मालदार है, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि फिर भी शरीके आखर इस मुअतिक से जमान नहीं ले सकता, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि शरीके आखर इस मुअतिक से जमान ले सकता है क्योंकि यह मालदार है। वजह इस इख्तिलाफ की यह है कि साहिबैन और इमाम साहब का इख्तिलाफ है। इमाम साहब के नजदीक ये जो उम्मे वलद है ये गैर मुतकविम है, इसकी कोई कीमत नहीं है, जबकि साहिबैन के नजदीक उम्मे वलद जो है वो मुतकविम है, उसकी कीमत है। तो जब इमाम साहब के नजदीक उम्मे वलद की कोई कीमत नहीं है तो जब एक साथी ने अपने हिस्से को आजाद किया तो दूसरे का हिस्सा भी आजाद हो गया और मौतिक पर जमान नहीं आएगा क्योंकि उम्मे वलद मुतकविम नहीं है, जबकि साहिबैन के नजदीक उम्मे वलद मुतकविम है तो शरीके आखर इस मौतिक से जमान ले सकता है। और फिर उसके बाद उसकी वजह जिक्र की थी साहिबे हिदाया ने कि साहिबैन फरमाते हैं कि ये उम्मे वलद मुतकविम है, वजह यह है कि उम्मे वलद से उसका मालिक फायदा उठाता है, मालिक जो है अपनी उम्मे वलद से सोहबत भी कर सकता है, उससे खिदमत भी ले सकता है और इजारे पर दूसरों को खिदमत के लिए भी दे सकता है कि वो बांदी दूसरे की खिदमत करेगी और उसकी उजरत आका वसूल करेगा। तो ये सब चीजें अलामत हैं उम्मे वलद के मुतकविम होने की। और नीज वो फरमाते हैं कि सिर्फ उम्मे वलद को बेचना जायज नहीं है लेकिन इस बै के मुमतना होने से उम्मे वलद की कीमत साकित नहीं होती, जैसे मुदब्बर है, मुदब्बर को भी बेचना जायज नहीं है लेकिन बिल इतफाक वो मुतकविम है, कीमत वाला है। और नी साहिबैन फरमाते हैं कि ईसाई की उम्मे वलद जब मुसलमान हो जाए तो उससे सई करवाई जाती है और वो सई करके अपनी कीमत अदा करती है और फिर आजाद हो जाती है। ये इस बात की दलील है कि उम्मे वलद मुतकविम है, अगर वो मुतकविम ना होती तो उससे सई ना करवाई जाती। और नी साहिब हिदाया ने ये भी बयान फरमाया कि ये जो उम्मे वलद है इसकी कीमत आम बांदी के सुलुस के बराबर होती है, यानी तीन में से सिर्फ एक हिस्सा। वजह यह कि जो आम बांदी होती है उसके तीन नफे होते हैं, उससे खिदमत ली जा सकती है, उसे बेचा जा सकता है और मौत के बाद उससे सई करवाई जा सकती है, लेकिन यह जो उम्मे वलद है इसको बेचा भी नहीं जा सकता और मौत के बाद इससे सई भी नहीं करवाई जा सकती, यह वैसे ही आजाद होती है। तो मालूम हुआ इस उम्मे वलद के तीन में से दो फायदे खत्म हुए, इसे बेचा भी नहीं जा सकता और मौत के बाद सई भी नहीं करवाई जा सकती, और सिर्फ एक फायदा इसका बाकी है कि इसे खिदमत ली जा सकती है मौत तक भाई। तो लिहाजा इसकी कीमत भी तीन में से दो हिस्से साकित हो गई और सिर्फ एक सुलुस रह गई भाई। यानी अगर ये अगर आम बांदी थी और इसकी कीमत 300 दिरहम थी तो उम्मे वलद बनने के बाद अब इसकी कीमत सिर्फ 100 दिरहम रह गई है, जबकि इसके मुकाबले में मुदब्बर जो है उसकी कीमत आम गुलाम की दो तिहाई होती है, यानी तीन में से दो हिस्से। वजह यह कि आम गुलाम के तीन फायदे हैं, उससे खिदमत ली जा सकती है, उसे बेचा जा सकता है और उसे मौत के बाद सई करवाई जा सकती है, लेकिन जब मुदब्बर बना दिया तो अब इसको बेचा नहीं जा सकता, जबकि बाकी दो फायदे उसी तरह है, इसे खिदमत भी ली जा सकती है और मौत के बाद सई भी करवाई जा सकती है। तो मुदब्बर के तीन में से दो फायदे अभी भी बाकी हैं, और एक फायदा साकित हुआ तो इसकी एक सुलुस कीमत साकित हो जाएगी। यानी अगर यही आम गुलाम होता तो इसकी कीमत अगर 300 दिरहम होती तो अब मुदब्बर बनने के बाद इसकी कीमत 200 दिरहम रह गई। भाई बात समझ में आ गई। उसके बाद साहिब हिदाया ने इमाम साहब की दलील जिक्र फरमाई। इमाम साहब फरमाते हैं कि किसी चीज का कीमत वाला होना यह एहराज के जरिए होता है कि उसको जमा किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। मैंने उसकी मिसाल जिक्र की थी कि जैसे ये गुलाम और बांदी, इनको जंग में कैद कर लिया गया तो उसके बाद इनकी कीमत हुई। इससे पहले ये आजाद थे, इनमें एहराज नहीं था, किसी ने इनको महफूज नहीं किया था। ये आजाद थे, इनकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब इनको कैदी बना लिया गया तो इनको इनमें एहराज आ गया, इनको महफूज कर लिया गया, इनको समेट लिया गया, इनको इकट्ठा कर लिया गया कि इनसे हम खिदमत लेंगे, ये हमारे गुलाम और बांदियां होंगे। तो इनमें एहराज आया, अब ये कीमत वाले हो गए। इसी तरह जंगल के अंदर लकड़ियां हैं, उनमें एहराज नहीं, आम जंगल है तो जो भी आदमी चाहे जाकर लकड़ियां इकट्ठी कर सकता है, तो इन लकड़ियों की कोई कीमत नहीं। लेकिन अगर आप इन लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने पास महफूज कर लेते हैं, तो अब ये कीमत वाली हो गई, अब आप इनको बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। मालूम हुआ कोई चीज कीमत वाली होती है एहराज के जरिए, कि उसको जमा किया जाए और महफूज किया जाए। और ये जो एहराज है ये दो किस्म पर है, एक एहराज लि नसब होता है और एक एहराज लि तकव्वुम होता है। यानी नसब के लिए महफूज करना, जैसे अपनी मनकूहा बीवी है उसकी भी इंसान हिफाजत करता है, लेकिन यहां उसकी हिफाजत इसलिए नहीं की जाती कि यह माल है, बल्कि नसब की वजह से इसकी हिफाजत की जाती है। तो इस मनकूहा बीवी के अंदर एहराज लि नसब है। एहराज लि नसब का क्या माना? एहराज लि नसब का माना यह है कि इस औरत की इसलिए हिफाजत की जा रही है कि हिफाजत करने वाला शख्स यानी उसका खावंद यह सोचता है कि इस औरत से मुझे औलाद हासिल होगी, इसके जरिए मेरे नसब का सिलसिला चलेगा। तो यह जो हिफाजत की जा रही है यह किस लिए है? नसब के लिए है भाई। तो यह है एहराज लि नसब। और जबकि दूसरा एहराज लि तकव्वुम है कि उसके अंदर इंसान किसी चीज को महफूज करता है उसकी कीमत होने की वजह से, मालदारी के लिए। देखें, आप अपनी तमाम चीजों की हिफाजत करते हैं, किस लिए? क्योंकि वो कीमत वाली हैं। तो मालदार होने के लिए इंसान अपनी चीजों की हिफाजत करता है। जितनी ज्यादा कीमत वाली चीजें आपके पास होंगी, आप उतने ही ज्यादा मालदार शुमार होंगे भाई। तो बास चीजों में एहराज नसब के लिए होता है और बास में एहराज तकव्वुम के लिए। और एहराज नसब या तो बीवी के अंदर है, और इसी तरह उम्मे वलद के अंदर जो एहराज है वो भी नसब के लिए है कि उससे उस आका की एक औलाद हो चुकी है। तो अब आका जो इसकी हिफाजत करता है वो नसब के लिए करता है। मालूम हुआ एहराज दो किस्म पर है, एक एहराज लि नसब और एक एहराज लि तकव्वुम। और मैंने आपको बतलाया था कि एहराज लि नसब असल है और एहराज लि तकव्वुम उसके ताबिअ है। तो जब तक ये बांदी उम्मे वलद नहीं बनी थी, आम बांदी थी, तो इसके अंदर एहराज लि तकव्वुम था, कीमत वाला होने की वजह से इसकी हिफाजत की जाती थी कि यह कीमती चीज है। और लेकिन जब इससे आका की औलाद हो गई तो अब इसके अंदर एहराज लि नसब आ गया, और एहराज लि नसब असल है और एहराज लि तकव्वुम ताबिअ है। तो अब ताबिअ का कोई एतबार नहीं, बल्कि यहां सिर्फ कौन सा एहराज है? नसब के लिए है भाई। तो मालूम हुआ उम्मे वलद की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इसमें एहराज लि तकव्वुम नहीं है बल्कि एहराज लि नसब है। चुनांचे इसीलिए उम्मे वलद जो है वो ना तो वारिसों के लिए सही करती है और ना कर्जखाहों के लिए। आका पर दैन हो फिर भी उम्मे वलद वैसे ही आजाद होगी, वो कर्जखाहों के लिए सही नहीं करेगी। और आका का माल सिर्फ यही उम्मे वलद हो तो भी ये सारी की सारी वैसे ही आजाद हो जाएगी, ये बाकी दो सुलुस के अंदर वारिसों के लिए सही नहीं करेगी भाई। जबकि इसके मुकाबले में जो मुदब्बर है, मुदब्बर के अंदर जो एहराज होता है वो नसब के लिए नहीं होता, वो तकव्वुम के लिए होता है कि वो कीमत वाला है। तो लिहाजा आपका उम्मे वलद को मुदब्बर पर कियास करना सही नहीं। और नीस फरक की वजह यह है उम्मे वलद और मुदब्बर में कि मुदब्बर जो है उसके अंदर जो आजादी का सबब है वो ये कि आका ने उससे कहा है अंत हुर्रुन बादा मौती, तू मेरे मरने के बाद आजाद है, या आका ने उससे कहा है इन मुत्तु फअंत हुर्रुन, अगर मैं मर गया तो तू आजाद है। तो बहरहाल जो भी अल्फाज आका ने कहे हैं मुदब्बर ने मरने के बाद आजाद होना है, लेकिन आका के इन्हीं लफ्जों से जो इस वक्त आका कह रहा है अंत हुर्रुन बाद मौती, तो आका ने गुलाम की आजादी को मुअल्लक कर दिया अपनी मौत के साथ। और आपने पढ़ा है कि इंदल अहनाफ मुअल्लक जो होता है वो सबब बनता है इंदा वजूदी शर्त, जब शर्त पाई जाएगी तब ये मुअल्लक पाया जाएगा और ये सबब बनेगा। गोया इस वक्त अंत हुर्रुन है ही नहीं, जब आका मरेगा तो अंत हुर्रुन आएगा और गुलाम आजाद हो जाएगा, तो मालूम हुआ इस वक्त मुदब्बर की आजादी का सबब है ही नहीं। आका की जिंदगी में मुदब्बर की आजादी का सबब गोया के मौजूद ही नहीं है, मौत के बाद अंत हुर्रुन आएगा, इस वक्त वो अंत हुर्रुन कल आदम हो चुका है भाई। जबकि उम्मे वलद जो है उसके अंदर आका की जिंदगी में ही आजादी का सबब आ चुका है, क्योंकि उम्मे वलद से आका की औलाद हुई है और औलाद आका का भी जूस उम्मे वलद का भी जूस, तो आका और उम्मे वलद एक दूसरे का जूस हो गए। जब एक दूसरे का जूस हो गए तो मालूम हुआ ये उम्मे वलद आका का जूस बन गई, जब आका का जूस बन गए तो अपना जूस तो इंसान का ममलूक नहीं हो सकता, ये तकाजा करता है कि इस उम्मे वलद को फौरन आजाद हो जाना चाहिए और नीज आका पर इसको हराम हो जाना चाहिए, क्योंकि इंसान पर अपना जूस हराम होता है। कोई शख्स अपनी बेटी से निकाह नहीं कर सकता क्योंकि बेटी उसका अपना जूस है भाई। तो यहां पर भी आका और उम्मे वलद के दरमियान जुजियत वाला ताल्लुक आ गया है, यह तकाजा कर रहा है कि यह उम्मे वलद अभी से आका पर हराम होनी चाहिए। यह इसी तरह है जैसे हुर्मत मुसाहरत के अंदर खावंद बीवी का जुज बन गया और बीवी खावंद का जुज बन गई, तो यह तकाजा करता है कि जैसे एक दूसरे के उसूल और फोरो आपस में एक दूसरे पर हराम हैं, इसी तरह ये खुद भी एक दूसरे पर हराम हो जाएं। लेकिन शरीयत ने तो खावंद और बीवी को एक दूसरे पर हराम करार नहीं दिया, मालूम हुआ वहां शरीयत ने जरूरत की वजह से इजाजत दे दी। तो यहां पर भी ये जब उम्मे वलद आका का जुज हो गई तो ये तकाजा करता है कि इस उम्मे वलद को आका पर हराम होना चाहिए, लेकिन उम्मे वलद को शरीयत ने आका पर हराम करार नहीं दिया जरूरत और हाजत की वजह से, क्योंकि इंसान बकाए नस्ल का मोहताज है, तो इसके जरिए आका अपनी नस्ल को और अपने नसब को बाकी रखेगा। तो उस शरीयत ने जरूरत की वजह से आका को इस उम्मे वलद से नफा उठाने की इजाजत दी मौत तक। तो जब आका और उम्मे वलद में जुजियत वाला ताल्लुक आ गया तो इसने तकाजा किया कि यह उम्मे वलद आजाद होनी चाहिए, लिहाजा आका की इस पर मिल्कियत भी बाकी ना रहे और इसकी कीमत भी खत्म हो जाए, क्योंकि जब आजाद हो जाएगी तो आका की ममलूक नहीं, जब ममलूक नहीं तो आका नफा भी नहीं उठा सकता, और नीज जब आजाद हो गई तो आजाद की तो कोई कीमत नहीं होती भाई। तो लिहाजा इस उम्मे वलद के अंदर आजादी का सबब यानी जुजियत अभी भी मौजूद है, और ये दो चीजों का तकाजा करती है ये जुजियत, एक तो इसके ऊपर से आका की मिल्कियत साकित होनी चाहिए और दूसरी ये कि इसकी कीमत साकित होनी चाहिए। तो आका की मिल्कियत तो शरीयत ने जरूरत की वजह से साकित नहीं की, लेकिन कीमत के साकित होने में तो कोई जरूरत नहीं, लिहाजा कीमत साकित हो जाएगी। कीमत क्या है? साकित हो जाएगी, लिहाजा उम्मे वलद जो है वो आका की ममलूक तो है लेकिन इसकी कीमत साकित हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर हुर्रियत वाला सबब मौजूद है। तो लिहाजा मालूम हुआ उम्मे वलद और मुदब्बर एक दूसरे से जुदा हैं भाई, और नीज ये जो मुदब्बर है मुदब्बर को बेचा नहीं जा सकता। कियास तो यह तकाजा करता है कि मुदब्बर की बै भी जायज होनी चाहिए, लेकिन आका के मकसद के पूरा करने के लिए उसकी बै को शरीयत ने मुमतनेअ करार दिया। आका का मकसद क्या था? आका चाहता है मेरे मरने के बाद यह आजाद हो, और यह तभी हो सकता है जब यह इसी आका का ममलूक रहे, कोई और इसका मालिक ना हो। भाई और नी साहिबैन ने उम्मे वलद को कियास किया था ईसाई की उम्मे वलद पर जब वो मुसलमान हो जाए, कि उस उम्मे वलद से तो सही करवाई जाती है, मालूम हुआ उम्मे वलद कीमत वाली है, तो उसका जवाब दिया कि वहां पर उम्मे वलद कीमत वाली नहीं है, लेकिन वहां हमने दोनों जानिब की रियायत रखने के लिए उम्मे वलद को मुकातबा का दर्जा दे दिया। वजह यह कि अगर आप वहां उम्मे वलद से सही नहीं करवाएंगे फिर तो यह मुफ्त में आजाद हो जाएगी और इसमें तो आका बेचारे का हक मारा जाएगा। तो लिहाजा दोनों की रियायत रखते हुए हमने यह फैसला किया कि यह उम्मे वलद मुकातबा के दर्जे में है, ये जाकर पैसे कमाएगी और आका को अदा करेगी और फिर आजाद हो जाएगी। तो आका की भी रियायत हो गई, उसको अपनी उम्मे वलद की कीमत मिल गई, और उस मुसलमान उम्मे वलद की भी रियायत हो गई कि अब उसे ईसाई आका के तख्त नहीं रहना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा ये जो उम्मे वलद पैसे लाकर देगी ये बदले किताबत के दर्जे में है, और बदले किताबत के वजूब के लिए गुलाम या बांदी का मुतकव्विम होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। बाब इत्क अहदिल अब्दैनी, ये बाब है दो गुलामों में से एक की आजादी का। मसलन आका एक गैर मुअय्यन गुलाम को आजाद करे और बयान से पहले मर जाए तो क्या किया जाएगा? तवज्जो है, याद रखो, अगर आका अपने दो गुलामों में से एक गैर मुअय्यन को आजाद करे, मसलन आका के दो गुलाम हैं, आका ने कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है, तो इस सूरत में जब तक आका जिंदा है आका को मजबूर किया जाएगा कि बयान करे कि किसको उसने आजाद किया है भाई। और अगर आका बयान से पहले ही मर गया तो फिर इस सूरत में ये जो आजादी है ये दोनों गुलामों में तकसीम हो जाएगी, यानी यहां शुयू और तौजीअ पर अमल किया जाएगा। शुयू का माना है मुश्तरका होना और तौजीअ का माना है तकसीम करना। तो ये जो एक रकबा की आजादी थी इसको दोनों गुलामों में मुश्तरका करार दिया जाएगा और दोनों में ये तकसीम हो जाएगी, दोनों गुलामों में फैल जाएगी। तो निसफ एक गुलाम आजाद हो जाएगा और निसफ दूसरा, और बाकी निसफ के अंदर वो सही करेंगे और कीमत लाकर वारिसों को देंगे। भाई तो कहते हैं बाब इत्क अहदिल अब्दैनी, ये बाब है दो गुलामों में से एक की आजादी का। वमन कान लहू सलासत अबुदिन दखला अलैहि स्नान, सूरत मसला ये, एक आदमी के तीन गुलाम हैं, उसके पास दो गुलाम आए, उस आदमी ने कहा तुम दोनों में से एक आजाद है, अहदुकुमा हुर्रुन, फिर इन दो में से एक गुलाम तो चला गया, एक आका ही के पास रहा, और फिर वो तीसरा गुलाम आ गया, तो अब फिर आका के पास दो गुलाम मौजूद हैं। आका ने फिर इन दोनों से कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है। अब याद रखो जब तक आका जिंदा है उसे मजबूर किया जाएगा कि वो बयान करे कि उसने पहले अल्फाज के जरिए किस गुलाम का इरादा किया और दूसरे अल्फाज के जरिए किस गुलाम का इरादा किया, लेकिन आका बयान करने से पहले ही मर गया। तो इस सूरत में शेखैन रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि वो जो गुलाम निकल गया था, यानी वो जो खारिज था, वो गुलाम जो कमरे से निकल गया, वो जो खारिज है निसफ वो आजाद होगा, और ये जो आखिर में अंदर आया था ये दाखिल गुलाम निसफ ये आजाद होगा, और वो जो गुलाम जो यहीं पर रहा, वो जो पहले गुलाम के साथ आया था और फिर बाद में यहीं रहा, उसको ये ताबीर करेंगे साबित गुलाम से, जो यहीं पर साबित रहा यहीं पर मौजूद रहा, तो उस गुलाम में से चार में से तीन हिस्से आजाद हो जाएंगे। जो खारिज गुलाम था उसका निसफ आजाद, जो आखिर में दाखिल हुआ उसका भी निसफ आजाद, और जो यहीं पर मौजूद रहा यानी साबित रहा उसके चार में से तीन हिस्से आजाद हो जाएंगे, और बाकी कीमत के अंदर ये सही करेंगे, कमा कर लाएंगे और वारिसों को अदा करेंगे। सूरत समझ में आ गई। तो कहते हैं मन कान लहू सलासतु आबुदीन, जिस शख्स के तीन गुलाम थे, दखला अलैहि स्नानी, उस पर दो गुलाम दाखिल हुए, फकाल अहदुकुमा हुर्रुन, तो उस आका ने कहा तुम दोनों में से एक आजाद है। देखो एक गैर मुअय्यन को आजाद कर दिया। सुम्मा खरजा वाहिदुन व दखला आखरु, फिर एक निकल गया और दूसरा गुलाम दाखिल हुआ। अब भी आका के पास दो गुलाम हैं। तो अब फकाल अहदुकुमा हुर्रुन, तो आका ने कहा तुम दोनों में से एक आजाद है। सुम्मा माता वलम युबय्यिन, फिर आका मर गया और उसने बयान नहीं किया कि उसने किसका इरादा किया था भाई अपने दोनों कौलों के जरिए। तो कहते हैं आतका मीन अल्लदी उईदा अलैहिल कौलू, तो आजाद हो गया उस गुलाम में से जिस पर लौटाया गया कौल को, जिसको दो दफा कहा गया, यानी वो जो साबित है जी। पहले दो गुलाम आए थे, आका ने क्या कहा तुम दोनों में से एक आजाद है, अब एक तो चला गया लेकिन एक जो है वो यहीं पर मौजूद है, और फिर तीसरा गुलाम यहां आ गया, आका ने दोबारा कहा तुम दोनों में से एक आजाद है, तो जो गुलाम यहां मौजूद था उस पर दो दफा आका ने इस कौल को लौटाया, दो दफा उस पर दोहराया। अहदुकुमा हुर्रुन वाला कौल उस मौजूद गुलाम पर कितनी दफा दोहराया गया, दो मर्तबा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं आतका मीन अल्लदी उईदा अलैहिल कौलू, तो आजाद हो जाएगा उस गुलाम में से जिस पर उस कौल को दो दफा लौटाया गया, उसमें से आजाद होगा। कितना आजाद होगा, आगे फाइल आ रहा है आतका का, उसमें से आजाद होगा सलासतु अरबाइन, तीन चौथाई, चार में से तीन हिस्से आजाद हो जाएंगे। व निस्फ कुल वाहिदिन मिनल आखरैनी, और बाकी दोनों में से निसफ जो है वो आजाद होगा, दोनों में से हर एक में से, बाकी दोनों में से हर एक से निसफ आजाद होगा। इंद अबी हनीफा तव अबी यूसुफ रहिमहुम अल्लाह ताला, शेखैन रहिमहुम अल्लाह ताला के नजदीक। वकाल मोहम्मद उन रहिमहुल्लाह ताला कज़ालिक, और इमाम मोहम्मद रहमल्ला ने भी ऐसा ही फरमाया है। इल्ला फिल अब्दिल आखिरी, मगर आखिरी गुलाम के अंदर, वो जो दाखिल हुआ था आखिर में आया था। इल्ला फिल अब्दिल आखिरी, मगर आखिरी गुलाम के अंदर। फइन्नहु यातिकु रुबुहु, इसलिए क्योंकि उसका सिर्फ चौथा हिस्सा आजाद होगा। शेखैन तो फरमाते थे वो जो दाखिल हुआ उसका भी निसफ आजाद होगा और जो खारिज हुआ था उसका भी निसफ, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो दाखिल हुआ है इसका निसफ नहीं आजाद होगा बल्कि रुबु यानी चौथा हिस्सा आजाद होगा। और यहां यह इबारत देख लीजिए, इल्ला फिल अब्दिल आखिरी, याद रखो हिदाया के बाद नुस्खों में है इल्ला फिल अब्दिल आखिरी, और यह इबारत ज्यादा बेहतर है भाई। इल्ला फिल अब्दिल आखिरी, आखिर वाले गुलाम के अंदर इमाम मोहम्मद इख्तिलाफ करते हैं, यानी वो जो दाखिल हुआ था आखिर में भाई। तो हिदाया के बाद नुस्खों में है इल्ला फिल अब्दिल आखिरी, और यहां पर आखिर है इल्ला फिल अब्दिल आखिर, आखिर का माना भी आखिर वाला, आखिर का माना भी आखिर वाला, जबकि बाज उलमा ने इसको आखर पढ़ा है इल्ला फिल अब्दिल आखरी, और इस अब्द आखर से मुराद वो वाला गुलाम है, वो जो ऊपर जो मतन के शुरू में आया था, सुम्मा खराजा वाहिदुं व दखला आखरु, ये वाला आखर जो है ये मुराद है। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा आप चाहें इल्ला फिल अब्दिल आखिर पढ़ लें या इल्ला फिल अब्दिल आखर, दोनों तरह सही है भाई। तो मसला क्या हुआ, शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक खारिज और दाखिल गुलाम जो हैं उनका निसफ निसफ आजाद होगा, और जो वहां साबित था उसका तीन चौथाई भाई, चार में से तीन हिस्से आजाद हो जाएंगे, जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह वो सिर्फ दाखिल के अंदर इख्तिलाफ करते हैं कि दाखिल का निसफ आजाद नहीं होगा बल्कि रुबु यानी चौथा हिस्सा आजाद होगा। अब उसकी वजह जिक्र फरमाएंगे भाई। देखिए वजह यही समझ लीजिए, इधर देखिए भाई, भाई देखिए यहां तीन गुलाम हैं, पहले दो गुलाम आए एक निकल गया, वो जो निकल गया उसको खारिज से ताबीर करेंगे, और जो यहीं पर रह गया उसको साबित से ताबीर करेंगे, और जो बाद में एक और गुलाम अंदर आया उसको दाखिल से ताबीर करेंगे। तो कहते हैं यहां पर जब पहले दो गुलाम आए आका ने कहा तुम दोनों में से एक आजाद है, तो ये एताक दायर हो गया इन दोनों गुलामों में, ये एताक दायर हो गया दोनों गुलामों में, तो इसको तकसीम कर देंगे दोनों के अंदर, क्योंकि आका ने बयान तो किया नहीं, तो यूं कहेंगे कि निसफ उस खारिज का आजाद हुआ और निसफ इस साबित का आजाद हो गया। अब उसके बाद वो दाखिल तीसरा गुलाम अंदर आया, तीसरा गुलाम अंदर आया, अब फिर आका ने कहा तुम दोनों में से एक आजाद है, तो अब फिर ये जो एताक आया दूसरा एताक, ये फिर दोनों के अंदर निसफ निसफ तकसीम होगा, क्योंकि आका ने बयान तो नहीं किया कि इन दोनों में से कौन सा मुराद है, तो लिहाजा दाखिल का निसफ आजाद हो गया, जबकि जो साबित है उसके अंदर तो पहले ही निसफ आजाद है, तो साबित के गोया दो हिस्से हैं, निसफ आजाद है पहले ईजाब की वजह से, वो जो पहला कौल था, और निसफ अभी भी ये गुलाम है, तो अब मजीद निसफ एताक इसके हिस्से में आया, तो ये एताक इसके दोनों हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ये वाला निसफ एताक उस साबित के, साबित में पहले कौल की वजह से ही दो हिस्से हो गए थे, वो निसफ आजाद है और निसफ गुलाम, अब निसफ और आजादी आई तो ये साबित के दोनों निसफों में आधी आधी तकसीम हो जाएगी, तो निसफ का आधा कितना होता है रुबो, तो एक रुबो तो साबित के आजाद हिस्से में आ जाएगा और एक रुबो साबित के गुलाम हिस्से में आ जाएगा, तो गुलाम हिस्से के निसफ है उसके अंदर जब रुबो आजादी आ गई तो सिर्फ रुबो गुलाम रह गया, और वो जो रुबो आजाद हिस्से में आया वो लग्व चला गया, क्योंकि वो हिस्सा तो पहले ही आजाद है और आजाद को तो दोबारा आजाद नहीं किया जा सकता। भाई बात समझ में आ गई, फिर सुने, आका के पास दो गुलाम आए, आका ने कहा तुम दोनों में से एक आजाद है, तो लिहाजा इस आजादी को दोनों में मुश्तरका करार देंगे और इसको दोनों में तकसीम कर देंगे, मालूम हुआ आधा एक गुलाम आजाद हुआ और आधा दूसरा, फिर वो एक खारिज चला गया जिसका आधा हिस्सा आजाद हो चुका है और एक यही रह गया इसका भी आधा हिस्सा आजाद है, फिर उसके बाद एक और गुलाम आया, आका ने फिर कहा तुम दोनों में से एक आजाद है, तो फिर ये जो एताक है इसको दोनों में तकसीम करेंगे, तो निसफ एताक दाखिल की तरफ चला गया, तो दाखिल जो है उसका भी निसफ आजाद हो गया, और जबकि वो जो साबित था वो तो पहले ही से निसफ आजाद था, तो उसके हिस्से में जो निसफ एताक आया उस निसफ एताक को इस साबित के दोनों हिस्सों में तकसीम कर देंगे, और निसफ का निसफ कितना होता है रुबो, तो रुबो एताक जो है वो इस साबित के आजाद हिस्से की तरफ चला गया और निसफ एताक उसके गुलाम हिस्से की तरफ चला गया, तो जो रुबो आजाद हिस्से की तरफ गया वो तो लग्व चला गया क्योंकि वो हिस्सा तो पहले ही आजाद है, और दूसरा रुबो जो गुलाम हिस्से की तरफ आया तो उस गुलाम हिस्से का रुबो आजाद हो गया, यानी निसफ का निसफ मजीद आजाद हो गया। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं अम्मल खारिजु, अब दलील जिक्र कर रहे हैं, खारिज निसफ क्यों आजाद, दाखिल निसफ क्यों आजाद, और साबित के तीन रुबो क्यों आजाद। कहते हैं अम्मल खारिजु, तो खारिज जो है फली अन्नल ईजाब अल अव्वल दाइरुम बैनहू व बैन साबिती, इसलिए क्योंकि पहला ईजाब जो था, अब जब अयुजी वो ईजाब का क्या माना, इस बात, यानी वो जो आका ने इस बाते इत्क किया था कि तुम दोनों में से एक आजाद, तो कहते हैं फली अन्नल ईजाब अल अव्वल दाइरुम बैनहू व बैन साबिती, कहते हैं इसलिए क्योंकि वो जो पहला ईजाब था वो दायर था उस खारिज और साबित के दरमियान। अब साबित से कौन मुराद है, साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं, वह हुवल्लज़ी उईदा अलैहिल कौल, और साबित वो है जिस पर इस कौल को दोहराया गया। भाई फऔजब इत्का रकबतिन बैनहुमा लिस्तिवाइहिमा फऔजब, तो इस पहले ईजाब ने साबित कर दिया इत्का रकबतिन बैनहुमा कि एक रकबा की आजादी दोनों के दरमियान मुश्तरका है, दोनों में क्या करार देंगे, मुश्तरका। तो कहते हैं फाओ जब इतका रकबत बैना हुमा, तो इस पहले ईजाब ने साबित कर दिया कि एक रकबा की आजादी दोनों के दरमियान मुश्तरका है, लिस्तवा इहिमा, दोनों के बराबर होने की वजह से किसी एक को भी तरजीह नहीं दे सकते, दोनों बराबर हैं तो दोनों में यह आजादी तकसीम होगी। फयुसीब कुल्लम मिन हुमन निसफू, तो पहुंचेगा दोनों में से हर एक को निसफ। इस रकबा की आजादी में से दोनों में से हर एक को निसफ निसफ पहुंचेगा। तो फयुसीब कुल्लम मिन हुमन निसफ, तो इन दोनों में से हर एक को निसफ आजादी पहुंचेगी। गैर अन्न साबित इस्तफाद बिल ईजाब सानी रुबुअन आखरा, इलावा इसके कि जो साबित है जो वही मौजूद है, इस्तफाद इसने हासिल किया बिल ईजाब सानी, ईजाब सानी से भी रुबुअन आखरा, दूसरा रुबो। साबित का निसफ तो पहले ईजाब से ही आजाद हो गया और ईजाब सानी जब आका ने दोबारा कहा अहदुकुम अहरुन, तो ईजाब सानी से भी मजीद एक रुबो इस साबित का आजाद हो गया। तो कहते हैं गैर अन्न साबित इस्तफाद बिल ईजाब सानी रुबुअन आखरा, इलावा इसके कि जो साबित गुलाम है इसने ईजाब सानी से भी एक और रुबो हासिल कर लिया। ले अन्न सानिया दाइरुम बैनहु व बैन दाखिली, इसलिए क्योंकि ईजाब सानी जो था वो दायर था इस साबित के दरमियान और उस दाखिल गुलाम के दरमियान। फयतनस्सफु बैनहुमा, तो ये वाला इत्क भी दोनों के अंदर तकसीम हो जाएगा, दोनों में आधा आधा हो जाएगा। गैर अन्न साबित इस्तहक़्क़ा निस्फल हुर्रियति बिल ईजाबिल अव्वली, इलावा इसके कि जो साबित है ये मुस्तहिक हो चुका था निस्फ आजादी का बिल ईजाबिल अव्वली, पहले ईजाब से ही। ये जो साबित है इसको तो पहले ईजाब से ही आधी आजादी मिल चुकी है, आधी आजादी का ये मुस्तहिक हो चुका है, तो आधी वो मिली और रुबो ये मिल गया, तो तीन रुबो इसके आजाद होंगे। तो कहते हैं गैर अन्न साबित इस्तहक़्क़ा निस्फल हुर्रियति बिल ईजाबिल अव्वली, इलावा इसके कि जो साबित गुलाम है यानी जो मौजूद गुलाम है ये निस्फ आजादी का मुस्तहिक हो चुका है पहले ईजाब की वजह से ही। फशा अन निस्फुल मुस्तहक बिस्सानी फी निस्फई ही, फशा तो फैल गया अन निस्फुल मुस्तहक वो निसफ जिसका ये मुस्तहक हुआ है बिस्सानी ईजाब सानी के जरिए, ईजाब सानी के जरिए भी निसफ आजादी मिल रही है साबित को, निसफ आजादी मिल रही है साबित, तो इस निसफ आजादी को उस साबित के दोनों हिस्सों में तकसीम करेंगे, वो उनमें फैल जाएगी। तो कहते हैं फशा अन निसफुल मुस्तहक बिस्सानी फी निसफे ही, मुस्तहक यानी जिसका इस्तेहकाक निकला है जिसका ये हकदार हुआ है ईजाब सानी से। फशा अन निसफुल मुस्तहक बिस्सानी, तो सानी ईजाब के जरिए जिस निसफ का ये मुस्तहक हुआ है वो फैल गई फी निसफे ही इस साबित के दोनों निसफों में। फमा असाबल मुस्तहक बिल अव्वली लगा, तवज्जो है इधर देखिए, ईजाब अव्वल की वजह से साबित का निसफ पहले ही आजाद हो चुका है, तो मालूम हुआ ये साबित के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आजाद है एक हिस्सा गुलाम है, फिर ईजाब सानी से मजीद निसफ आजादी इसके हक में आ गई, तो इस निसफ आजादी को इस साबित के दोनों हिस्सों में तकसीम करेंगे, इस निसफ आजादी को दोनों हिस्सों में तकसीम, और निसफ का निसफ कितना होता है रुबो, तो रुबो आजादी आ जाएगी उसके आजाद हिस्से में और रुबो आजादी आ जाएगी उसके गुलाम हिस्से में। तो आजाद हिस्से में जो आजादी आई वो तो लग्व चली गई क्योंकि वो हिस्सा तो पहले ही आजाद है, और गुलाम हिस्से में जो रुबो आया तो उसका रुबो आजाद हो गया। तो कहते हैं फमा असाबल मुस्तहक कबिल अव्वली लगा, बस वो निसफ जो पहुंचा उस हिस्से को जो मुस्तहक हो चुका है पहले ईजाब की वजह से, जिसका हक पहले ईजाब की वजह से हो चुका है उसको जो निसफ पहुंचा लगा वो लग्व चला गया क्योंकि आजाद को तो दोबारा आजाद नहीं किया जा सकता। द्वामा असाबल फारिगा बकिया, और वो निसफ जो फारिग हिस्से को पहुंचा यानी जो आजादी से फारिग था जो अभी आजाद नहीं हुआ था, तो वो जो उसके आजादी से फारिग हिस्से को पहुंचा बकिया वो निसफ बाकी रहा भाई। فَيَكُونُ لَهُ الرُّبُعُ, تو معلوم ہوا اس ایجاب ثانی کے ذریعے ثابت غلام کو ربع مزید آزادی مل گئی
جی.
یہ معنی ہے فَيَكُونُ لَهُ الرُّبُعُ, تو ثابت کے لیے اس ایجاب ثانی کی وجہ سے ربع ہو گیا. فَتَمَّتْ لَهُ ثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ, تو پورے ہو گئے اس ثابت کے لیے تین چوتھائی, یعنی چار میں سے تین حصے پورے ہو گئے آزادی کے, اور ایک حصہ اس کا ابھی بھی غلام ہے, چار میں سے ایک حصہ. یہ تو ایک طریقے پر دلیل ذکر فرمائی صاحب ہدایہ نے. اب اسی کو دوسرے انداز میں ذکر فرمائیں گے, ادھر دیکھیے, اسی دلیل کو دوسرے انداز میں بیان فرمائیں گے صاحب ہدایہ. کہتے ہیں دیکھو ایجاب ثانی کے وقت, ایجاب ثانی کے وقت وہ ثابت بھی موجود ہے اور داخل بھی موجود ہے. تو آقا نے کیا کہا, احدکما حر, تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے. اگر اس کے ذریعے ثابت مراد ہو, اس احدکما حر سے آقا کس کا ارادہ کرے, ثابت کا ارادہ کرے, تو ثابت کا تو نصف پہلے آزاد ہے, باقی کا نصف بھی آزاد ہو جائے گا. اور اگر اس کے ذریعے آقا داخل کا ارادہ کرے تو داخل پورا آزاد ہو جائے گا. توجہ ہے, یہ جو ایجاب ثانی ہے اس کے ذریعے آقا اگر ثابت کا ارادہ کرے گا تو اس کا باقی نصف بھی آزاد ہو جائے گا, اور اگر داخل کا ارادہ کرے گا تو داخل آزاد ہوگا اور ثابت کا باقی حصہ آزاد نہیں. معلوم ہوا کہ ایک صورت میں ثابت کا باقی حصہ بھی آزاد ہوتا ہے اگر اسی کا ارادہ کیا ہے, اور ایک صورت میں ثابت کا باقی حصہ آزاد نہیں ہوتا اگر اس کا ارادہ نہیں کیا. لہذا ہم نے درمیانی راستہ اختیار کیا. یہاں دو صورتیں بن رہی ہیں, پھر سنو, یہاں دو صورتیں بن رہی ہیں کہ آقا نے ایجاب ثانی کے ذریعے ثابت کا ارادہ کیا ہے یا نہیں کیا. اگر ثابت کا ارادہ کیا ہے تو باقی نصف بھی آزاد, اور اگر ارادہ نہیں کیا تو باقی نصف آزاد نہیں. تو یہاں دو صورتیں بن رہی ہیں, ایک صورت میں ثابت کا باقی نصف آزاد ہو رہا ہے, ایک صورت میں باقی نصف آزاد نہیں ہو رہا. تو دو صورتیں بن رہی ہیں, تو ہم نے درمیانی راستہ اختیار کیا کہ وہ جو باقی نصف ہے وہ سارا آزاد ہو, یہ بھی فیصلہ ہم نے نہیں کیا, اور اس کو اسی طرح غلام رہنے دیں, یہ فیصلہ بھی ہم نے نہیں کیا, بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیا کہ یہ جو ثابت کا نصف غلام حصہ ہے اس کا نصف آزاد ہو جائے
جی.
کیونکہ ثابت کا جو نصف غلام حصہ ہے
جی.
ایک صورت میں وہ آزاد ہوتا ہے, ایک صورت میں آزاد نہیں ہوتا, تو ہم نے درمیانی صورت اختیار کر لی کہ اس نصف کا نصف آزاد قرار دیا جائے, یعنی ربع آزاد قرار دیا جائے. دلیل سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں ولی انہ لو ارید ہوا بسانی, اس لیے کیونکہ اگر یہ جو ثابت ہے اسی کا ارادہ کیا جائے ثانی ایجاب کے ذریعے, یا عتق النصف ہو, تو اس کا یہ نصف باقی بھی آزاد ہو جائے گا. ولو ارید بھی داخل لا یعتق ہذا النصف, اور اگر ایجاب ثانی کے ذریعے داخل کا ارادہ کیا جائے تو اس ثابت کا یہ نصف آزاد نہیں ہوگا. فیتنصف, تو لہذا اس میں تنصیف کر دی جائے گی
جی.
تو فیعتق منہ الربع بالثانی والنصف بالاول, تو ثابت جو ہے اس میں سے ربع آزاد ہو جائے گا ایجاب ثانی کی وجہ سے, والنصف بالاول, اور نصف آزاد ہو جائے گا ایجاب اول کی وجہ سے. واما الداخل, اور باقی جو داخل ہے
جی.
امام محمد رحمہ اللہ داخل میں اختلاف فرماتے تھے, شیخین فرماتے ہیں کہ داخل کا بھی نصف آزاد, امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ داخل کا صرف ربع آزاد ہوگا. وجہ کیا ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایجاب ثانی سے ثابت کا صرف ربع آزاد ہوا ہے تو داخل کا بھی صرف ربع ہی آزاد ہوگا. تو کہتے ہیں وَأَمَّا الدَّاخِلُ فَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ, اور باقی جو داخل ہے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَمَّا دَارَ الْإِجَابُ الثَّانِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّابِتِ, کہ جب ایجاب ثانی دائر ہو گیا اس داخل اور ثابت کے درمیان, وَقَدْ أَصَابَ الثَّابِتَ مِنْهُ الرُّبُعُ, اور ثابت کو اس میں سے ربع پہنچا ہے. میری کتاب میں ہے الثَّابِتُ تا کے اوپر پیش ہے, یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے بھائی. یہ الربع یہ فائل ہے قد اصاب کا, اور الثابت یہ مفعول ہے. وقد اصاب الثابت منہ الربع, اور تحقیق ثابت کو اس میں سے ربع پہنچا
جی.
بھائی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایجاب ثانی جو ہے وہ دائر ہوا ہے ثابت اور داخل کے درمیان, اور ثابت کو ربع پہنچا ہے تو داخل کو بھی ربع ہی پہنچے گا. तो कहते हैं वकद असाब साबिता मिन हु रुबो, और साबित जो है उसको रुबो पहुंचा है, फकदाली का युसीबु दाखिला, तो इसी तरह दाखिल को भी रुबो पहुंचेगा भाई। वह हुमा यकूलान, जबकि शेखैन रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे कि इजाबे सानी की वजह से साबित को तो रुबो पहुंचेगा लेकिन दाखिल को निसफ पहुंचेगा। तो कहते हैं वह हुमा यकूलानी, और शेखैन रहिमहुमल्ला फरमाते हैं इन्नहु दाइरुम बैनहुमा, कि ये जो इजाबे सानी है ये साबित और दाखिल के दरमियान दायर है। इजाबे सानी किसके दरमियान है? साबित और दाखिल के दरमियान। वकजियतुहु तंसीफ, और इसका फैसला जो है वो तंसीफ है, आधा करना। तंसीफ का क्या माना? आधा कर देना। वह कजियतहु तंसीफ, और इसका फैसला जो है वो उस आजादी को आधा करना है। वह इन्नमा नज़ला इला रुबो फी हक़ साबिती, लेकिन ये निसफ जो है रुबो की तरफ उतर आया। साबित को मिला कितना? निसफ, लेकिन ये निसफ काम होकर कितना हो गया? रुबो, क्योंकि रुबो तो उस हिस्से में चला गया जो पहले से ही आजादी का मुस्तहिक हो चुका है भाई। तो कहते हैं वह इन्नमा नज़ला इला रुबो फी हक साबिती, और यह निसफ भी रुबो की तरफ उतर आया साबित के हक में। लिस्तेहकाक ही निसफ बिल इजाबिल अव्वली, इसलिए क्योंकि ये जो साबित है यह तो निसफ आजादी का मुस्तहिक हो चुका है इजाब अव्वल की वजह से ही। कमा जकरना, जैसे कि हमने जिक्र कर दिया। वला इस्तेहकाक लिद्दाखिल मिन कबलु, और दाखिल के लिए तो कोई इस्तेहकाक नहीं है मिन कबलु पहले से। फयसबुतु फी निसफ, तो उसके अंदर वो निसफ ही साबित हो जाएगा
जी।
वो निसफ ही साबित हो जाएगा। दलील अच्छी तरह समझ में आ गई। قال فإن كان القول منه في المرض قسم الثلث على هذا قال, इस काला से मुराद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है भाई। ये आगे जामे सगीर की इबारत है भाई। काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं फइन कान अल कौलु मिनहु फिल मरजी, कि अगर आका की तरफ से यह कौल मरजुल मौत में हुआ तो कुस्सिमा सुलुसु अला हाजा, तो सुलुस को तकसीम किया जाएगा इसी तरीके पर
जी।
भाई आप जानते हैं कि मरजुल मौत के अंदर वारिसों का हक भी माल के साथ मुतालिक हो जाता है। सेहत की हालत में तो इंसान चाहे अपने सारे माल को जला दे, खत्म कर दे, या किसी को दे दे, वो उसका इख्तियार है। लेकिन जब वो मरजुल मौत में मुबतला हो गया, अब वो मरने वाला है, उसका माल वारिसों की तरह मुंतकिल होने वाला है, तो वारिसों का हक उसके माल में आ गया। अब वो अपने माल के सुलुस तक जो है तसरुफ कर सकता है, यानी वैसे ही किसी को दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। बात समझ में आ गई? यानी मरजुल मौत में इंसान जो तसरुफ कर रहा है वो वसीयत के दर्जे में है, वसीयत के दर्जे में है भाई। तो जब वसीयत के दर्जे में है, वसीयत तो सिर्फ सुलुस में नाफिज होती है, तीसरे हिस्से में। तो अब ये जो गुलामों के जो हिस्से आजाद हुए, ये अब उसी सुलुस में से इनका हिसाब किया जाएगा, सुलुस में से पूरे किए जाएंगे, और बाकी दो सुलुस वारिसों के लिए बचेंगे। तवज्जो है। قال امام محمد رحمه الله جامع صغير میں فرماتے ہیں فان كان القول منه في المرض, اگر آقا کی طرف سے یہ قول جو ہے مرض الموت میں ہوا اور اس کے ان غلاموں کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تو قسم الثلث على هذا, تو ثلث کو تقسیم کیا جائے گا اسی طریقے پر۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اب وہ آگے صاحب ہدایہ بیان فرمائیں گے۔ कहते हैं वह शरह जालिका, और इसकी शरह यह है कि अयुजमा बैना सिहामिल इत्की, और वो ये कि आजादी के हिस्सों को जमा किया जाएगा। वही सब अतुन अला कौलिहिमा, और ये सात हिस्से हैं शेखैन रहमहुमल्ला के कौल पर। भाई देखिए, भाई देखिए, हमें यहां रुबो हिस्सों की जरूरत है, रुबो वाले। वजह यह कि जो साबित था उसके चार में से तीन हिस्से आजाद हुए हैं, यानी तीन रुबो आजाद हुए हैं। तो सारे हिस्से एक जैसे करने के लिए हम हर गुलाम के रुबो बना लेंगे। तो जब रुबो बना लिए तो वो गुलाम जो खारिज था उसका निसफ आजाद हुआ था, और निसफ में कितने रुबो होते हैं? दो रुबो। यानी कुल गुलाम के अंदर चार रुबो थे तो दो रुबो उसके आजाद हो गए। जो दाखिल था उसके भी दो रुबो आजाद हो गए, यानी निसफ भाई। और जो साबित था उसके تین روبو آزاد ہو گئے، تو دو روبو خارج کے، دو روبو داخل کے، یہ چار روبو ہو گئے، اور تین روبو جو ہیں ثابت کے آزاد ہو گئے، چار اور تین سات، تو کل سات حصے آزاد ہوں گے ان غلاموں کے، لیکن یہ اب سلس میں سے سات حصے بنانے ہیں، باقی دو سلس کس کے لیے بچنا چاہیے؟ وارثوں کے لیے، کیونکہ اور کوئی مال نہیں ہے، صرف یہی تین غلام ہیں اس آدمی کے بھائی. تو کہتے ہیں وشرح ذالک، اور شرح اس کی یہ ہے، ان یجمع بین سہام العتق، کی آزادی کے حصوں کو جمع کیا جائے گا، وہی سبعۃ علی قولہما، اور یہ سات حصے ہیں شیخین رحمہم اللہ کے قول پر، لئن نجعل کل رقبۃ علی اربعۃ، اس لیے کیونکہ ہم ہر غلام جو ہے اس کے چار حصے کر دیں گے، ہر رقبہ کے چار حصے کر دیں گے، لِأَنَّا نَجْعَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ، اس لیے کیونکہ ہم ہر رقبہ جو ہے اس کو چار حصوں پر کر دیں گے، لِحَاجَتِنَا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ، اس لیے کیونکہ ہمیں تین چوتھائی کی حاجت ہے، ایک غلام کے تین چوتھائی حصے آزاد ہو رہے ہیں، یعنی چار میں سے تین حصے، تو ہر غلام کے چار چار حصے کر دو تاکہ ایک جیسی صورت بن جائے بھائی. فنقول، تو ہم کہتے ہیں، یعتق من الثابت ثلاثۃ اسہم، کہ ثابت غلام میں سے اس کے تین حصے آزاد ہوں گے، ومن الآخرین من کل واحد منہما سہمانی، اور باقی دونوں جو ہیں ان میں سے ہر ایک سے دو حصے آزاد ہوں گے، فَيَبْلُغُ سِحَامُ الْعِتْقِ سَبْعَةً، تو آزادی کے حصے سات تک پہنچ گئے، آزادی کے حصے کتنے ہو گئے؟ سات ہو گئے، وَالْعِتْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ، اور مرض الموت کے اندر جو آزادی ہوتی ہے وہ وصیت ہے، وَمَحَلُّ نَفَاذِهَا الثُّلُثُ، اور وصیت کا محل نفاذ ثلث ہے، وصیت صرف ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے، فَلَا بُدَّ أَن يُجْعَلَ سِحَامُ الْوَرَثَةِ ضِعْفَ ذَلِكَ، بھائی دیکھیے ان تین غلاموں کے سات حصوں نے آزاد ہونا ہے، اور اس کو ہم نے سلس میں سے پورا کرنا ہے، جب یہ سلس بنے گا معلوم ہوا دو سلس وارثوں کے لیے باقی رہنے چاہیے، دو سلس وارثوں کے لیے، تو یہ سات حصے ایک سلس میں ہیں، تو باقی جو دو سلس ہیں ہر سلس میں بھی سات حصے بنا لو، یہ سات حصے کیا ہے؟ سلس، اور باقی کتنے ہیں؟ دو سلس، تو اس سلس میں کتنے حصے تھے؟ سات، تو باقی دونوں میں سے بھی ہر سلس میں کتنے حصے ہو جائیں گے؟ سات سات، یہ سات آزاد ہوں گے، اور سات چودہ، یعنی دو سلس باقی وارثوں کے لیے بچ جائیں گے، تو ہمیں کل 21 حصے بنانے ہیں ان غلاموں کے، تاکہ سات آزاد ہو جائیں تو اس کے دگنا یعنی 14 جو ہیں وہ وارثوں کے لیے بچ جائیں، یعنی دو سلس بھائی. تو کہتے ہیں فلا بد ان یجعل سہام الورثۃ ضعف ذلک، پس ضروری ہے کہ وارثوں کے حصے اسے دگنے قرار دیے جائیں. اچھا، تو گویا ہمیں کل 21 حصے چاہیے، اور مال صرف یہی تین غلام ہیں، تو ہر غلام کے سات سات حصے کر دیں، تو سات یہ 21، اب 21 حصے پورے ہو گئے، اور ان 21 میں سے ہم نے کتنے آزاد کرنے ہیں؟ سات حصے آزاد کرنے ہیں بھائی. لہذا جب ہر غلام کے سات حصے ہو گئے، تو خارج کے سات میں سے دو حصے آزاد ہو گئے، دو ربو تھے نا، تو دو حصے خارج کے آزاد ہو گئے، اور جو داخل تھا اس کے اندر بھی دو ربو تھے، تو وہاں اس کے بھی سات میں سے دو حصے آزاد ہو گئے، اور جو ثابت تھا اس کے اندر تین ربو تھے، تین حصوں نے آزاد ہونا تھا، توجہ ہے، بلکہ یہاں روبو کا لفظ نہ لائیں، روبو سے آپ کو وہم پڑ رہا ہے بھائی. اب ہم نے وارثوں کے لیے بھی حصے رکھنے ہیں، اور غلاموں کی آزادی بھی اس میں جاری کرنی ہے، تو سات حصوں نے آزاد ہونا ہے، اور 14 حصے باقی بچنے چاہیے، تو خارج کے بھی کتنے حصے آزاد؟ دو حصے، اور باقی پانچ وارثوں کے لیے بچ گئے، اور داخل کے بھی دو حصے آزاد، اور باقی پانچ حصے وارثوں کے لیے بچ گئے، پانچ اور پانچ 10 بچ گئے وارثوں کے لیے، اور جو تیسرا ثابت غلام ہے اس کے ساتھ میں سے تین حصے، ثلاثۃ اربعۃ تھا وہاں، اس کے ساتھ میں سے تین حصے آزاد ہو گئے، تو چار بچ گئے وارثوں کے لیے. پھر سنو، خارج کے کل کتنے حصے تھے؟ سات، دو حصے آزاد ہو گئے، باقی کتنے بچے؟ پانچ. داخل کے بھی کل کتنے حصے تھے؟ سات، दो हिस्से आजाद हो गए तो बाकी कितने बचे, पांच, पांच और पांच दस हो गए, और फिर जो साबित था उसके साथ में से तीन हिस्से आजाद तो बाकी कितने बचे, चार, तो दस और चार चौदह, चौदह हिस्से बच गए वारिसों के लिए और सात हिस्से आजाद हो गए, तो एक सुलूस में आजादी आ गई और दो सुलूस वारिसों के लिए रह गए। तो खारिज के दो हिस्से आजाद हो गए और बाकी पांच हिस्सों में वो सही करेगा और उसके पैसे लाकर वारिसों को देगा। दाखिल के भी सात में से दो हिस्से आजाद हो गए और बाकी पांच हिस्सों में वो सही करेगा और पैसे लाकर वारिसों को देगा। और वो जो साबित है उसके सात में से तीन हिस्से आजाद हुए और वो चार हिस्सों में सही करेगा और लाकर उनके पैसे वारिसों को देगा। भाई तो कहते हैं फयुज अलू कुल्लू रकबतिन अला सबातिन, तो हर गुलाम के कितने हिस्से बनाने हैं, सात हिस्से। अब वही बयान कर रहे हैं, कहते हैं फयुज अलू कुल्लू रकबतिन अला सबातिन, तो हर रकबा जो है यानी हर गुलाम जो है उसको सात हिस्से करार दिया जाएगा। वह जमी उल माल अहदू व इशरूना, और सारा माल जो है वो इक्कीस हिस्से हो गया, 21 हो गया, यानी ये जो तीनों गुलाम हैं। फयातिकु मिनस साबिती सलासतुन, तो वो जो साबित गुलाम था उसमें से तीन हिस्से आजाद हो जाएंगे। वयसआफी अरबातिन, और वो सही करेगा अपने चार हिस्सों में। वयातिकु मिनल बाकी यईनी मिन कुल्ले वाहिदिन मिन हुमा सहमानी, और आजाद होगा मिनल बाकी यईनी, वो जो बाकी दो हैं, मिन कुल्ले वाहिदिन मिन हुमा सहमानी, उन दोनों में से हर एक के अंदर दो हिस्से, बाकी दोनों गुलाम जो हैं उनमें से हर एक के अंदर दो हिस्से आजाद होंगे। वयसआफी खमसतीन, और वो सही करेंगे अपने पांच हिस्सों में। फईदा तअम्मलता व जमाता, जब आप इसमें गौर करें और इनको जमा करें। इस्तकामत सुलुसु व सुलुसानी, तो दुरुस्त रहेगा सुलुस भी और सुलुसान भी। सुलुस वसीयत कितने में नाफिज होती है, सुलुस, तो जो हिस्से आजाद हों वो सुलुस होने चाहिए और जो हिस्से बाकी बचे हैं वो दो सुलुस होने चाहिए। तो कुल कितने हिस्से आजाद हुए, सात, और बाकी कितने बचे, चौदह। तो देखो सुलुस आजाद है और दो सुलुस बाकी हैं, ये माना है। फईदा तअम्मल तव जमाता, जब आप इनमें गौर करें और इनको जमा करें। इस्तकाम सुलुस व सुलुसानी, तो दुरुस्त रहेगा सुलुस और दो सुलुस। भाई व इंद मोहम्मदिन रहिमहुल्ला, अब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे, दाखिल का सिर्फ रुबो आजाद होगा, दाखिल का सिर्फ रुबो आजाद होगा। शेखैन रहमतुल्लाह तो फरमाते थे दाखिल का निसफ आजाद होगा जी। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक दाखिल का सिर्फ रुबो, रुबो, निसफ के अंदर दो रुबो थे जी। तो लिहाजा एक हिस्सा कम कर दें जी। एक हिस्सा कम, हर गुलाम के चार हिस्से कर दें। खारिज के कितने हिस्से आजाद, दो रुबो, और साबित के तीन रुबो, और दाखिल के इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक एक रुबो, तो ये छह हिस्से बन गए। दो हिस्से खारिज के, तीन हिस्से साबित के और एक हिस्सा दाखिल का, ये छह हिस्से बन गए। तो अब ये छह हिस्सों ने आजाद होना है, तो ये एक सुलुस है। तो जब एक सुलुस में छह हिस्से हैं तो दो सुलुस जो बचने चाहिए उसमें कितने होने चाहिए, बारह हिस्से। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक कुल हिस्से अठारह बनाएंगे, हर गुलाम के छह हिस्से बनाएंगे। तो छह में से खारिज के दो हिस्से आजाद और साबित के तीन हिस्से आजाद और दाखिल का एक हिस्सा आजाद, तो ये कुल छह हिस्से आजाद हो गए। और खारिज में के छह में से दो हिस्से आजाद हुए तो कितने रह गए, चार हिस्से वारिसों के लिए रह गए। और साबित के छह में से तीन हिस्से आजाद हो गए तो तीन वारिसों के लिए रह गए, चार पहले खारिज में से रह गए थे और तीन साबित में से, चार और तीन सात, चार और तीन सात। और फिर वो जो दाखिल है, दाखिल में से कितना आजाद, एक, पांच बाकी ही रह गए वारिसों के लिए। सात और पांच कितने हो गए, बारह। देखो छह हिस्से आजाद हो गए और बारह हिस्से वारिसों के लिए रह गए। تو کہتے ہیں وعند محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یجعل کل رقبت علی ستۃ کہ ہر رقبہ جو ہے اس کو چھ قرار دیا جائے گا یعنی اس کے چھ حصے بنائے جائیں گے لأنه يعتق من الداخل عنده سهم اس لیے کیونکہ داخل میں سے ایک حصہ آزاد ہوگا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فنقصت سهام العتق بسهم تو آزادی کے جو حصے ہیں وہ کم ہو گئے ایک حصہ ایک حصہ کیا ہو گیا کم شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک سات حصے آزاد ہوں گے تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک چھ حصے آزاد ہوں گے یہ معنی ہے فنقصت سهام العتق بسهم تو آزادی کے حصے وہ ایک حصہ کم ہو گئے وصار جميع المال ثمانية عشر اور سارا مال جو ہے وہ اٹھارہ ہو گیا یعنی اٹھارہ حصے وباقی التخریج ما مر اور باقی تخریج وہ ہے جو گزر گئی یعنی باقی صورت وہی ہے بھائی بات سمجھ میں آ گئی ولو کان ھذا فی الطلاق وهن غیر مدخولات وما تزوج قبل البیان سقط من مہر الخارجۃ ربعه ومن مہر الثابتۃ ثلاثۃ اسمانه ومن مہر الداخلۃ ثمنه
توجہ سے بھائی یہ مسئلہ بھی پچھلے مسئلے جیسا ہے لیکن یہ ذرا اور بھی اس کے مقابلے میں مشکل ہے تھوڑا سا اب یہی صورت جو ہے بیویوں کے اندر بنا لو جی اور بیویاں بھی غیر مدخول بیہا ہیں جن سے خاوند نے صحبت نہیں کی اور آپ جانتے ہیں کہ غیر مدخول بیہا جو ہے اس کو خاوند طلاق دے دے تو اس کو نصف مہر دینا پڑتا ہے جی رخصتی سے پہلے اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو پھر نصف مہر دینا پڑتا ہے تو ایک آدمی کی تین بیویاں ہیں اور تینوں غیر مدخول بیہاں ہیں یعنی کسی سے بھی اس نے ابھی صحبت نہیں کی اس کے پاس دو بیویاں آئیں اس نے کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے ان میں سے ایک بیوی چلی گئی اور ایک یہیں ہے بھائی وہ ثابت ہے یہیں پر موجود ہے بھائی اور پھر اس کے بعد تیسری بیوی آئی اب پھر ان سے اس خاوند نے کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے بات سمجھ میں آ گئی بھائی یاد رکھو یہ جو غیر مدخول بیہا ہے اس کو خاوند اگر طلاق دے گا تو پھر نصف مہر دینا پڑے گا لیکن اگر ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے ہی خاوند یا بیوی میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر پورا ہی مہر دینا پڑتا ہے اگرچہ اس نے صحبت نہیں کی لیکن پھر بھی پورا ہی مہر دینا پڑے گا چاہے بیوی کا انتقال ہو جائے چاہے خاوند کا انتقال ہو جائے صرف طلاق کی صورت میں نصف مہر دینا پڑے گا اگر ابھی صحبت نہیں کی بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں غیر مدخول بیہا عورتوں کی صورت ذکر کی تاکہ اس کی مناسبت ہو جائے غلاموں کے ساتھ غلام جیسے اعتاق کے ذریعے آزاد ہو جاتا ہے ملکیت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں غیر مدخول بھی ہاں عورت جو ہے آپ نے پڑھا ہے اس کو بھی ایک ہی طلاق دیں تو فوراً بائنہ ہو جاتی ہے اور اس پر عدت بھی نہیں ہوتی وہ اجنبیہ بن جاتی ہے وہ فوراً ہی کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے تو لہذا اس لیے یہاں غیر مدخول بھی ہاں عورتوں کی مثال بنائی تاکہ غلاموں کی طرح کا مسئلہ ہو جائے بھائی تو صورت کیا ایک آدمی کی تین بیویاں ہیں اور تینوں میں سے ایک کے ساتھ بھی اس نے ابھی صحبت نہیں کی ان تین میں سے دو اس کے پاس آئیں اس نے کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے تو اب ان میں سے ایک باہر چلی گئی اور ایک یہیں پر موجود ہے اور پھر تیسری بیوی آ گئی اب پھر اس خاوند نے ان دونوں سے کہا تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اس ایک کو طلاق ہے تو اب کیا مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں بھائی ایک ہے نصف ایک ہے ربع اور ایک ہے سمن یعنی آٹھواں حصہ جی نصف یعنی آدھا حصہ ربع یعنی چوتھا حصہ اور سمن یعنی آٹھواں حصہ اور دیکھو آٹھ کے عدد کو دیکھیں آٹھ کا نصف کتنا ہے آٹھ کا نصف کتنا ہے چار اور آٹھ کا ربع کتنا ہے آٹھ کے ذرا چار حصے کریں ہر حصے میں کتنا آئے گا دو تو معلوم ہوا یہ جو دو ہے یہ آٹھ کا ربع ہے جی آٹھ کے ذرا آٹھ حصے کریں ہر حصے میں ایک آئے گا معلوم ہوا یہ جو آٹھ میں سے ایک ہے یہ آٹھ کا سمن ہے جی تو آٹھ کا نصف کیا چار آٹھ کا ربع کیا دو اور آٹھ کا سمن کیا ایک दूसरे लफ्जों में यूं कहो, आठ का जो निसफ है यानी चार, इस चार को निसफ करें
जी।
तो रुबो बन जाता है
जी।
यानी दो जी। और दो को निसफ करें तो एक यानी सुमुन बन जाता है
जी।
तो निसफ का निसफ कितना होता है रुबो, और रुबो का निसफ कितना होता है सुमुन। या नीचे से देखें, दो सुमुन जमा हो तो कितना बनता है रुबो, और दो रुबो जमा हो तो कितना बनता है निसफ, और दो निसफ जमा हो तो पूरी चीज बन जाएगी। बात समझ में आ गई। अब याद रखो, यहां पर गैर मदखूल बिहा औरतें हैं, और गैर मदखूल बिहा बीवी को जब इंसान तलाक देता है तो निस्व महर साकित हो जाता है, निस्व महर साकित हो जाता है। तो अब गुलामों में और इस मसले में थोड़ा सा हिसाब का फर्क आएगा। गुलामों के अंदर वहां जब आका ने कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तो एक पूरे रकबा को वो आजाद कर रहा है, पूरे रकबा को आजाद कर रहा है। लेकिन यहां पर जब गैर मदखूल बिहा दो बीवियों को कहा तुम दोनों में से एक को तलाक है, तो इस सूरत में निस्व महर साकित हो जाएगा, जिसको तलाक होगी उसका निस्व महर साकित होगा। तो वहां पूरी रकबा की बात चलती थी, यहां निस्व महर की बात चलेगी। तो वहां पर पूरी रकबा की बात थी और यहां निस्व महर की बात थी, और पूरी रकबा को जब तंसीफ करें तो आधी आधी हो जाती है। लेकिन ये जो निस्व महर साकित हो रहा है इसकी तंसीफ करें तो दो रुबो बन जाएंगे। वहां पूरी रकबा दो गुलामों में तकसीम करते थे तो हर एक हिस्से में आधी आधी रकबा आती थी, और यहां तलाक दी है गैर मदखूल बिहा को तो निस्व महर में साकित होना है, तो किसका कितना महर साकित हुआ, तो उस निसब को जब दोनों में तकसीम करेंगे तो हर एक हिस्से में रोबो आएगा
जी।
बात समझ में आ गई। और फिर रोबो की अगर हम तकसीम करेंगे तो उस सूरत में फिर सुमुन बन जाएगा वो। तो गुलामों के मसले में पूरे रकबा की बात थी, फिर उसकी तंसीफ होती थी तो वो निसफ बनता था, फिर उस निसफ का निसफ करते थे तो वो रुबो बन जाता था। और इस तलाक के मसले में निस्व महर ने साकित होना है तो निसफ की बात होगी, और फिर जब उसको निसफ को निसफ करेंगे तो रुबो बन जाएगा, और फिर उस रुबो का जब निसफ करेंगे तो वो सुमुन बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां भी बेआईन ही वही सूरत है, अलबत्ता वहां जहां निसफ आता था यहां रुबो आ जाएगा, और वहां जहां रुबो आता था यहां सुमुन आ जाएगा। फिर दोहराएं, वहां उस मसले में जहां निसफ आता था यहां पर रुबो आएगा, और वहां जो रुबो आता था यहां सुमुन आएगा। अब मुझे मसला बताइए भाई, अब मुझे मसला बताइए, दो बीवियां आई और उसने कहा तुम दोनों में से एक को तलाक है, फिर एक चली गई, एक वहीं पर मौजूद है, अब तीसरी बीवी आ गई, इसने फिर कहा तुम दोनों में से एक को तलाक है, और फिर बयान से पहले ही वो मर गया। अब तलाक की वजह से निस्व महर ने साकित होना है, तो वो जो पहले दो आई थी इस निस्व महर को दोनों में तकसीम किया तो एक रुबो महर साकित, दूसरी का रुबो महर भी साकित। तवज्जो है। फिर उसके बाद एक तो अब यही मौजूद है और एक चली गई, तीसरी आ गई, अब फिर खावन ने क्या कहा तुम दोनों में से एक को तलाक है। जब वहां गुलामों के अंदर दोबारा आका कहता था तो वो जो गुलाम वहीं पर मौजूद था उसको कितना मिलता था, वो जो गुलाम वहीं मौजूद था उसको मजीद रुबो आजादी और मिल जाती थी। यहां जो बीवी ये जो यहां मौजूद है इसका रुबो महर साकित हो चुका है, इसका अब रुबो का निसफ मजीद साकित हो जाएगा यानी सुमुन। और रुबो में कितने सुमुन होते हैं, रुबो में दो सुमुन और एक सुमुन मजीद साकित हो गया, तो कुल तीन सुमुन इस मौजूद बीवी के महर में से साकित हो गए
जी।
और जो बीवी बाद में दाखिल हुई है
जी।
तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब एक मौजूद बीवी का सुमुन मजीद साकित हुआ है तो ये जो अंदर दाखिल हुई है इसका भी सुमुन ही साकित होगा। जैसे गुलामों के मसले में वो फरमाते थे कि जो साबित गुलाम है उसको रुबो मजीद आजादी मिली है तो जो दाखिल है उसको भी रुबो मिलेगी, लेकिन यहां रुबो के मुकाबले में अब क्या आ गया सुमुन। तो यहां जो बीवी यही मौजूद है इसके हिस्से में से जब सुमुन मजीद साकित होगा महार तो जो दाखिल हुई है उसके भी महर में से सिराफ सुमन साकित होगा
जी।
ये किसके नजदीक? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। और शेखैन रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे कि वो गुलामों के मसले में जो गुलाम वहीं मौजूद था उसको रुबो मजीद आजादी मिलेगी और जो अंदर आया है उसको निसफ मिलेगी। तो यहां पर भी जो बीवी यहीं मौजूद है, जो बीवी यहीं पर मौजूद है उसके महर में से तो सुमन साकित होगा
जी।
और जो बीवी बाद में आई है उसमें से सुमन को दुगना करें यानी रुबो साकित होगा। तो शेखैन रहमतुल्लाह के मजहब के मुताबिक जो बीवी खारिज हुई थी उसका भी रुबो महर साकित, जो आखिर में दाखिल हुई है उसका भी रुबो साकित, और जो यहीं पर मौजूद थी उसके तीन सुमन यानी डेढ़ रुबो जो है
जी।
एक और आधा यानी तीन सुमन इसके महर में से साकित हो जाएगा
जी।
बात समझ में आ गई? तो बास फुकहा फरमाते हैं यहां भी मसला उसी तरह है, यहां भी मसला उसी तरह है। शेखैन रहमतुल्लाह के मुताबिक जो खारिज है उसका रुबो महर साकित, जो दाखिल है उसका भी रुबो महर साकित, और जो यहीं पर मौजूद थी उसके तीन सुमन जो हैं वो महर साकित हो गए। जबकि बाज फुकहा फरमाते हैं कि नहीं, यहां मसला जरा शेखैन फर्क करते हैं, यहां शेखैन भी वही चीज बयान करते हैं जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह बयान कर रहे थे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि जो बीवी बाहर निकली है उसका महर रुबो साकित, जो बीवी यही मौजूद है इसके तीन सुमन साकित, और जो दाखिल हुई है उसका एक सुमन साकित है। तो यहां शेखैन भी यही फरमाते हैं कि जो दाखिल हुई है उसका एक सुमन महर साकित है। मालूम हुआ शेखैन रहिमहुमल्लाह ने गुलामों के मसले में और बीवी के मसले में फर्क किया है। वहां वो फरमाते थे दाखिल गुलाम का निसफ आजाद होगा, और निसफ के मुकाबले में यहां क्या आना चाहिए? रुबो। निसफ का आधा रुबो। लेकिन यहां पर वो कहते हैं कि दाखिल बीवी का रुबो नहीं साकित होगा, उसका निसफ यानी सुमन साकित होगा। मालूम हुआ गुलामों के मसले में और इसमें शेखैन रहमहुमल्लाह ने फर्क किया है। उस फर्क की वजह क्या है वो आगे मैं बयान करता हूं, देखिए भाई। तो कहते हैं वलौ कान हादा फी तलाकी, और अगर यही कलाम जो है तलाक के बारे में हुआ, वहुन गैर मदखूलातिन, और हाल यह है कि वो बीवियां गैर मदखूलात हैं यानी उनसे सोहबत नहीं की गई, व माता ज़ौजु क़ब्ल अल बयानी, और खावंद बयान से पहले ही मर गया, सकता मिन महर अल खारिजति रुबुउहू, तो वो जो बाहर निकली है उसके महर में से रुबो साकित हो जाएगा, व मिन महर साबितति सलासतु असमानी ही, और वो जो साबित है उसके महर में से तीन सुमन साकित हो जाएंगे, व मिन महर दाखिलति सुमनुहू, और वो जो दाखिल हुई है उसके महर में से भी सुमन ही साकित होगा। तो बाज़ फरमाते हैं इस मसले में तीनों अइम्मा का इत्तेफाक है। यहां पर शेखैन रहमहुमल्लाह भी इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के साथ हैं कि जो दाखिला है इसके महर में से सुमन ही साकित होगा। तो कहते हैं वह मिन महर दाखिलति सुमनुहू, और वो जो दाखिल होने वाली बीवी थी उसके महर में से सुमन साकित होगा। कील हादा कौलु मुहम्मदिन रहमहुल्लाहु तआला खासतन, कहा गया है कि यह खास तौर पर इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है कि दाखिला को क्या मिलेगा? सुमन। वइंदहुमा यस्कुतु रुबुउहू, जबकि शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक दाखिला के महर में से रुबो साकित होगा। वकीला हुआ कौलुहुमा ऐज़न, और कहा गया है कि यह शेखैन रहमहुमल्लाह का भी यही कौल है यहां पर
जी।
ये शेखैन रहमहुमल्लाह का भी यहां पर यही कौल है। वकद ज़करनल फर्क़ा व तमाम तफरीआतिहा फी ज़ियादात, और साहिबे हिदाया फरमाते हैं वकद ज़करनल फर्क़ा, और तहकीक हमने फर्क जिक्र किया कि शेखैन रहमहुमल्लाह ने गुलामों के मसले में और इस तलाक के मसले में फर्क क्यों किया। वहां वो फरमाते हैं कि दाखिल का निसफ आजाद होगा, और यहां पर दाखिला का रुबो साकित होना चाहिए उसके मुताबिक, लेकिन वो क्या फरमाते हैं? सुमन जो है उसका महर साकित होगा
जी।
तो इस फर्क की वजह क्या है? तो साहिब हिदायत फरमाते हैं वक़द ज़कर नल फ़र्क़ा कि तहकीक हमने फर्क को जिक्र किया है, व तमाम तफरीआतिहा और इस मसले की सारी तफरीआत को हमने जिक्र किया है, फिर ज़ियादात ज़ियादात के अंदर। शेखैन रहिमहुमल्ला ने जो गुलामों और तलाक के मसले के अंदर फर्क किया है इसको और इस मसले की तमाम तफरीहात को हमने ज्यादात में जिक्र किया है। भाई साहिब हिदाया बाज जगहों पर यह ज्यादात का हवाला देते हैं कि मैंने ज्यादात में जिक्र किया है, तो बाज शारहीन फरमाते हैं कि मुराद है शरह ज्यादात, क्योंकि ज्यादात तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताब है, मालूम हुआ साहिब हिदाया ने ज्यादात की शरह लिखी थी उसके अंदर इन्होंने इसको जिक्र किया है, लेकिन वो जिक्र इसी तरह कर देते हैं कि मैंने ज्यादात में जिक्र किया है, क्योंकि पढ़ने वाला समझ लेता है कि मुराद क्या है, ज्यादात की शरह मुराद है। जबकि बाशारहीन फरमाते हैं कि नहीं, मालूम होता है कि साहिब हिदाया की भी कोई किताब थी ज्यादात नाम की, जो आज दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन ये उसका हवाला देते हैं। बात समझ में आ गई। तो बाजों ने कहा कि इस ज्यादात से शरह ज्यादात मुराद है और बाज कहते हैं कि ज्यादात से खुद साहिब हिदाया की कोई तसनीफ मुराद है। भाई तो साहिब हिदाया फरमाते हैं ये फर्क और इसकी सारी तफरीआत हमने ज्यादात में जिक्र की हैं। अब फर्क समझ लो भाई, फर्क समझ लो, याद रखो जब आका दो गैर मुआयन गुलामों में से एक को आजाद करे कि अहदुकुमा हुर्रुन, तो जब तक आका जिंदा है उसको बयान पर मजबूर किया जाएगा, लेकिन अगर वो बयान न करे और उसका इंतकाल हो जाए तो फिर वो रकबा उसमें शुयू और तौजी पर अमल किया जाता है, वो रकबा दोनों गुलामों में फैल जाएगी, निसफ एक का आजाद हो जाएगा और निसफ दूसरे का आजाद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो फर्क यह है कि यहां पर जब आका ने गुलामों को ये इजाबे अव्वल भी कर दिया और इजाबे सानी भी कर दिया और मौत तक उसने बयान नहीं किया, आका मर गया, तो यूं समझेंगे जिस वक्त आका ने इजाबे अव्वल किया था उसी वक्त आजादी दोनों गुलामों में फैल गई थी
जी।
उसी वक्त आजादी। भाई बाद में अगर आका बयान कर देता तो वो एक मुतायन हो जाता, ये वाला आजाद है, लेकिन आका ने तो मौत तक बयान नहीं किया, जब मौत तक बयान नहीं किया तो यह अब आजादी दोनों गुलामों में फैल जाएगी, लेकिन यूं नहीं कहेंगे कि अभी फैल गई, यूं समझेंगे उसी वक्त आजादी फैल गई थी क्योंकि आका ने आगे बयान ही नहीं किया, उसी वक्त दोनों में आजादी फैल गई थी। तो जब आजादी फैल गई तो दोनों गुलाम आए थे, दोनों का निसफ निसफ आजाद हो गया, जब निसफ गुलाम आजाद हो जाए तो बाकी निसफ मुकातब के दर्जे में होता है इमाम साहब के नजदीक। बाकी निसफ किसके दर्जे में? मुकातब के दर्जे में है, जबकि इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वो मुतरद्दिद है बैन अल हुर्र वल अब्दी, क्योंकि रिक जो है गुलामी है उसकी, और रिक और इत्क जो है उसकी तनसीफ नहीं हो सकती। तो लिहाजा दोनों गुलामों में से हर एक मुतरद्दिद है बैन अल हुर्रियती वर रिक, किसके नजदीक? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह। साहिबैन का यही मजहब है ना कि एताक की तनसीफ नहीं हो सकती
जी।
तो लिहाजा ये जो दो पहले गुलाम आए थे, आका ने कहा कि तुम दोनों में से एक आजाद है
जी।
तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मजहब के मुताबिक ये दोनों गुलाम अब मुकातब के दर्जे में हो गए
जी।
दोनों मुकातब के दर्जे में हो गए, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक भी ये इनमें से कोई एक भी अभी आजाद नहीं है, ये दोनों क्या है? मुतरद्दिद हैं बैन अल हुर्रियति वर रिक्की। बाज एतबार से देखें गुलाम है, बाज एतबार से देखें गुलाम नहीं है। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा उसके बाद एक गुलाम तो चला गया खारिज जो है और एक अभी यहीं पर है, तो उसके बाद दूसरा गुलाम आ गया, तो आका दोबारा कहता है अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है
जी।
तो आका का ये इजाबे सानी सही है
जी।
आका का ये इजाबे सानी सही है, क्योंकि एक पूरा गुलाम है और एक मुकातब है
जी।
तो आका का ये इजाब बिल्कुल सही है, ये बातिल नहीं। बात समझ में आ गई। और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक भी ये मुतरद्दिद है बैन अल हुर्रियति वर रिक़ी, तो मालूम हुआ ये भी कोई कतई तौर पर आजाद नहीं। लिहाजा आका का इजाबे सानी बिल्कुल सही है, इजाबे अव्वल भी सही था क्योंकि दोनों गुलाम थे और आका ने कहा था अहदुकुमा हुर्रुन, और अब एक निकल गया और दूसरा आ गया, अब भी आका ने कहा अहदुकुम हुर्रुन, अब भी आका का इजाब सही है क्योंकि दोनों में से एक पूरा गुलाम है और दूसरा मुकातब है या मुतरद्दिद है बैन अल हुर्रियति वर रिक्बै। जबकि बीवी के मसले में ऐसा नहीं, बीवी के अंदर जब दो बीवियां आईं और खावन ने कहा इहदाकुमा तालिकुन, तो यहां अब तलाक की तंसीफ नहीं हो सकती। हुर्रियत की तो तंसीफ हो जाती थी, आधी आधी हुर्रियत दोनों में फैल जाती थी, लेकिन तलाक की तंसीफ नहीं हो सकती क्योंकि तलाक होगी तो पूरी ही होगी, तो तलाक की तंसीफ नहीं हो सकती, लिहाजा एक को पूरी तलाक होनी है। जब एक को पूरी तलाक होनी है तो एक इनमें से निकल गई, एक बीवी यहीं रह गई। अगर खावंद ने को खारिज बीवी जो थी उसका इरादा किया था तो उसको तलाक हो गई, वह अजनबी बन गई, और ये जो दाखिल वाली है अभी भी क्या है, बीवी है। अब जब तीसरी बीवी आ गई तो अब खावंद ने क्या कहा, इहदाकुमा तालिकुन, तो अब भी खावंद का ईजाब सही है, वह तलाक साबित कर रहा है। यह कब है, अगर ईजाब अव्वल के जरिए उसने खारिज का इरादा किया था तो यह साबित अभी भी क्या है, इसकी बीवी है, तो खावंद का ईजाब सानी भी सही है
जी।
लेकिन अगर खावंद ने ईजाब अव्वल के जरिए इस साबित का इरादा किया था
जी,
तो यह तो अजनबिया हो चुकी है, तलाक हो गई ना, और गैर मदखूल बिहा है, इस पर इद्दत भी नहीं है, साथ ही बाइन हो गई, तो यह अजनबिया बन गई, और उसके बाद तीसरी बीवी आ गई। अब खावंद ने दोबारा कहा इहदाकुमा तालिकुन, तो इस सूरत में साबित जो है ये तो अजनबिया हो चुकी है
जी।
और दूसरी अभी बीवी है, तो इहदाकुमा तालिकुन, ये गोया खावंद सिर्फ खबर दे रहा है
जी।
खावंद खबर दे कि तुम दोनों में से एक तलाक वाली है, और वाकई हकीकत में वो जो साबित है वो क्या है, वो तलाक वाली हो चुकी है। तो यहां ये ईजाब रहा ही नहीं, ये खबर बन गई
जी।
यहां यूं नहीं कहा जाएगा दूसरी तलाक दे रहा है, बल्कि सिर्फ एक खबर दे रहा है
जी।
जैसे एक गुलाम खड़ा हो और एक आजाद खड़ा हो
जी।
तो एक आदमी दोनों को कहता है अहदुकुमा हुर्रुन, तो वो खबर दे रहा है तुम दोनों में से एक आजाद है, वाकई दोनों में से एक आजाद है और एक गुलाम है
जी।
तो मालूम हुआ तलाक वाले मसले में अगर खावंद ने खारिज का इरादा किया था ईजाबे अव्वल के जरिए, तो ईजाबे सानी उसका सही है, ईजाबे सानी के वक्त भी दोनों बीवियां हैं। और अगर खावंद ने साबित का इरादा किया था ईजाबे अव्वल में
जी,
तो ईजाबे सानी लग चला जाएगा, जबकि वहां गुलामों के मसले में ईजाबे अव्वल भी सही था, ईजाबे सानी भी सही था, जबकि यहां तलाक के मसले में यह जो दूसरा ईजाब है बाज एतबार से देखें तो यह ईजाब बनता है, और बाज एतबार से देखें तो यह ईजाब है ही नहीं, यह ईजाब बातिल है, सिर्फ वो खबर दे रहा है। तो इसलिए यहां पर शेखैन रहमतुल्लाह ने फर्क किया है गुलाम और तलाक के मसले के अंदर भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ ईजाब सानी बाज एतबार से है, बाज एतबार से बातिल है। अगर ईजाब सानी को मान लिया जाए, तो ईजाब सानी को ईजाब करार दिया जाए, तो फिर निस्फ महर साकित होता है, और अगर ईजाब सानी को इखबार करार दिया जाए तो फिर कोई महर साकित नहीं होगा इसकी वजह से, क्योंकि ये तो खबर दे रहा है। तो बाज एतबार से देखें ईजाब सानी के अंदर कोई महर साकित नहीं हो रहा, और बाज एतबार से देखें तो निस्फ महर साकित हो रहा है। तो हमने दरमियाना रास्ता इख्तियार किया, हमने यह भी नहीं कहा कि आधा महर साकित होगा, हमने यह भी नहीं कहा कि कुछ भी नहीं साकित होगा
जी।
हमने इसको ईजाब भी नहीं करार दिया, ईजाब करार देते तो आधा महर साकित हो जाता, हमने इसको इखबार भी करार नहीं दिया, अगर इखबार करार देते तो कोई महर साकित ना होता, बल्कि हमने दरमियाना रास्ता इख्तियार किया कि रोबा महर साकित होगा
जी।
इसमें ना आधा साकित होगा और ना ऐसा हो कि कुछ भी साकित ना हो, बल्कि दरमियानी सूरत के इस निसफ का निसफ यानी रुबा महर साकित होगा, और वो रुबा फिर दोनों के अंदर तकसीम हो जाएगा। और रुबा का निसफ कितना है, सुमन, तो साबित का सुमन मजीद साकित हो गया महर, और दाखिल का भी सुमन महर साकित हो गया। तो इसलिए यहां पर शेखैन रहमहुमल्ला ने फर्क किया है गुलामों के मसले से, क्योंकि गुलामों के मसले में ईजाब सानी हर हाल में ईजाब ही ईजाब है, जबकि ये बीवियों के मसले में तलाक के मसले में ईजाब सानी मीन वजह इखबार है और मीन वजह ईजाब है, यानी इस बात तलाक है भाई। बाज एतबार से बात समझ में आ गई, फर्क समझ में आ गया। तो ये माना है वक़द ज़कर नल फर्क व तमाम तफरीआती हाफिज ज़ियादाती, और तहकीक हमने फर्क को और इस मसले की सारी तफरीआत को ज़ियादात में जिक्र किया है। वमन قال لعبديه احدكما حر فباع احدهما او مات او قال له انت حر بعد موتي عتق الاخر। भाई सूरत मसला ये, एक आदमी है उसके दो गुलाम हैं, उसने इन दोनों में से एक गैर मुअय्यन को आजाद कर दिया, उसने इन दोनों गुलामों से कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है। अब आप जानते हैं कि जब तक आका जिंदा है उसको बयान पर मजबूर किया जाएगा, और बाज औकात आका ऐसा फेल करेगा कि वो फेल ही बयान बन जाएगा, वो फेल ही दलील बन जाएगा उसकी कि उसने किसकी आजादी का इरादा किया था। बाज औकात कोई ऐसी चीज या ऐसा फेल पाया जाएगा कि वो बयान बन जाएगा कि कौन सा गुलाम आजाद हुआ है, कौन सा गुलाम आजाद हुआ है। मसलन आका ने अपने दो गुलामों से कहा अहदुकुमा हुर्रुन, अभी आका ने बयान नहीं किया था कि दोनों में से एक मर गया, तो याद रखो ये जो जिंदा है ये आजादी के लिए मुतायन हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरा तो मर चुका है, वो महल्ले बयान ही ना रहा
जी।
वो महल्ले बयान ही ना रहा, उसको बयान अब किया ही नहीं जा सकता क्योंकि उस पर आजादी वाकई नहीं हो सकती, वो महल्ले इत्क रहा ही नहीं भाई। याद रखो एक और कीमती बात याद रखना, ये जो आका बाद में बयान करता है ये बयान भी मिन वजह इताक ही होगा, ये बयान भी आका ने दोनों गुलामों से कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तो बाज एतबार से देखें तो ये है इताक अहदुकुमा हुर्रुन। फिर आका से बाद में बयान लिया गया कि बताओ किसका इरादा किया था, उसने कहा मैंने फुलां वाले गुलाम का इरादा किया था, तो ये जो आका बयान कर रहा है ये बयान भी मीन वजह इंशा है, उसी वक्त वो गुलाम आजाद हो जाएगा
जी।
उसी वक्त वो गुलाम, तो आका का अहदुकुमा कहना ये बाज एतबार से ये है इताक, और बाज एतबार से देखें तो जो आका बयान कर रहा है वो है इताक भाई
जी।
तो लिहाजा जब आका का बयान इताक है तो इताक के लिए तो महल चाहिए, तो जब दो गुलामों में से एक मर चुका है तो अब उस मरे हुए गुलाम में तो ये इताक नहीं कर सकता, वो महल ही ना रहा इताक का
जी।
तो लिहाजा इस सूरत में दूसरा गुलाम मुतायन हो जाएगा आजादी के लिए और वो आजाद हो जाएगा। दूसरी सूरत के आका ने अहद कुमा हुर्रुन कहने के बाद एक गुलाम को बेच दिया
जी।
आका का बेचना इस बात की दलील है कि उसने दूसरे गुलाम की आजादी का इरादा किया था, क्योंकि इस गुलाम को तो ये बेच रहा है, मालूम है इसके अंदर इसने अपनी मिल्कियत बरकरार रखी है, अगर इसकी उसने नियत की होती तो इसको तो वो बेच नहीं सकता था भाई, तो इसका बेचना ये बयान बन जाएगा, बल्कि बेचना नहीं, बेचने का सिर्फ इरादा भी कर दे, बेचने का सिर्फ इरादा करे, यानी पता चल जाए उसके फेल से, किसी से भावताव करता है कि मैं ये गुलाम आपको इतने इतने में देता हूं, तो बैअ तो नहीं हो सकी, दोनों राजी ना हुए, लेकिन एक गुलाम की बैअ करना, उसका भाव ताव करना, उसकी कीमत के बारे में किसी से बात करना, मालूम हुआ कि इसने दूसरे गुलाम की आजादी का इरादा किया था, अगर इसका इरादा किया होता तो इसको तो ये बेच नहीं सकता था। इसी तरह अगर आका ने अपने दो गुलामों से कहा अहदुकुमा हुर्रुन, फिर उनमें से एक को मुदब्बर बना दिया, तो मालूम हुआ उसने दूसरे गुलाम का इरादा किया था
जी।
मालूम हुआ इसने दूसरे गुलाम का इरादा किया था, क्योंकि इस गुलाम को मुदब्बर बना रहा है, अपनी मौत तक इससे फायदा उठाना चाहता है, खिदमत लेना चाहता है भाई। बात समझ में आ गई। और नीज एक और वजह भी कि जो आका ने कहा था अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है, मालूम हुआ वो कामिल इत्क चाहता है, पूरे तौर पर गुलाम को आजाद करना चाहता है। पूरे तौर पर आजाद करना चाहता है। और जब यह गुलाम को इसने मुदब्बर बना दिया, मुदब्बर को भी आका जिंदगी में भी आजाद कर सकता है, लेकिन मुदब्बर को जब आजाद करे वो तो कामिल आजादी नहीं है। मुदब्बर में तो वैसे भी आजादी का मुस्तहिक हो चुका है, तो कामिल आजादी क्या है? एक ऐसे गुलाम को आजाद करे जिसका आजादी हक नहीं है। भाई बात समझ में आ गई। लिहाजा आका ने अपने दो गुलामों को कहा अहदुकुमा हुर्रुन, और फिर बाद में एक को मुदब्बर बना दिया। तो इसका यह मुदब्बर बनाना बतला रहा है कि इसने दूसरे का इरादा किया है, क्योंकि वह कामिल इत्क चाहता था, और कामिल इत्क इस मुदब्बर में तो नहीं हो सकता, उस दूसरे में हो सकता है, मालूम उसी का उसने इरादा किया था। तो अब देखिए किताब पर कहते हैं वमन काल अल अबदैही, और जिस शख्स ने अपने दो गुलामों से कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है, फबाअ अहदहुमा, तो उसने दोनों में से एक को बेच दिया, औ माता, या दोनों में से एक मर गया, औ काल लहू अंत हुर्रुन बाद मौती, ये एक से आका ने बाद में कह दिया कि तू मेरे मरने के बाद आजाद है। तो इन तमाम सूरतों में हतकल आखर, दूसरा गुलाम आजाद हो जाएगा। भाई क्यों, वजह क्या है? अब दलील जिकर कर रहे हैं, कहते हैं लि अन्नहु लम यबका महल्लन लिल इत्की असलन बिल मौती, कहते हैं इसलिए क्योंकि एक सूरत में गुलाम, एक गुलाम मर गया था, जब वो मर गया तो वो आजादी का महल ही न रहा, अब उसको बयान नहीं किया जा सकता भाई, क्योंकि बयान भी क्या है, मीन वजह एताक ही है, और मरे हुए में तो एताक नहीं हो सकता भाई। तो कहते हैं लि अन्नहु लम यबका महल्लन लिल इत्की, इसलिए क्योंकि वो गुलाम आजादी के लिए महल ही ना रहा असलन कतई तौर पर, बिल मौती, मौत की वजह से, वलिल इत्की, इसका आतफ भी माकबल वाले लिल इत्क पर है, और नीज वो गुलाम आजादी के लिए महल न रहा मिन जिहति ही बिल बैई, आका की जानिब से, बिल बैई बेचने की वजह से, आका की जानिब से वो बेचने की वजह से इत का महल ही न रहा, आका ने तो उसको बेच दिया है, अब उसको तो वो आजाद नहीं कर सकता, वो तो गैर का ममलूक बन गया है। वलिल इत्की मिन कुल्ल वजहिन बितदबीर, और इसी तरह आजादी का गुलाम महल न रहा मुदब्बर बनाने की वजह से भी। तो कहते हैं वलिल इत्क, और वो गुलाम आजादी का महल न रहा मिन कुल्ली वजहिन हर एतबार से, बित तदबीर मुदब्बर बनाने की वजह से, मुदब्बर बनाने की वजह से गुलाम आजादी का महल तो है लेकिन कामिल आजादी का महल नहीं है, ये माना है वलिल इत्क मिन कुल्ली वजहिन बित तदबीरी, और हर एतबार से आजादी का महल न रहा बित तदबीर मुदब्बर बनाने की वजह से, फतअय्यन अल आखरू, तो दूसरा गुलाम मुतअय्यन हो गया आजादी के लिए, वली अन्नहू, यहां से दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं, वली अन्नहू बिल बैई कसद अल वसूल इला समनी, और इसलिए क्योंकि आका ने गुलाम को बेचने के जरिए इरादा किया उस गुलाम के समन तक पहुंचने का, कि इसके समन मुझे मिल जाएं, समन इसके मुझे मिल जाए, मालूम हुआ उसने इस गुलाम की आजादी का इरादा नहीं किया। वह बित तदबीर इबका अल इंतफाई इला मौती ही, और मुदब्बर बनाने के जरिए आका ने इरादा किया इबका अल इंतफाई इला मौती ही, कि वो इससे नफा उठाने को बाकी रखना चाहता है, इला मौती ही अपनी मौत तक। जब एक को मुदब्बर बना रहा है, मालूम हुआ इससे नफा उठाने को वो बाकी रखना चाहता है अपनी मौत तक, तो दूसरा गुलाम मुतअय्यन हो जाएगा आजादी के लिए। ये दूसरी दलील दोबारा देखिए, कहते हैं वली अन्नहु बिल बैई कसद अल वसूल इला समनी, और इसलिए क्योंकि आका ने बैअ के जरिए इरादा किया है उस गुलाम के समन तक पहुंचने का, वह बित तदबीर इबका अल इंतफाई इला मौती ही, और तदबीर के जरिए यानी मुदब्बर बनाने के जरिए आका ने इरादा किया है कि वो इस गुलाम के इंतफा को बाकी रखना चाहता है अपनी मौत तक, वल मकसूदानी युनाफियान इल इत्कल मुल्तजमा, और ये दोनों मकसूद जो हैं आका के बैअ के जरिए वो समन हासिल करना चाहता है, और तदबीर के जरिए वो इसके इंतफा को मौत तक बाकी रखना चाहता है, तो वल मकसूदान, ये दोनों जो मकसूद हैं आका के, युनाफियान इल इत्क अल मुल्तजमा, ये मुनाफी हैं उस इत्क के, अल मुल्तजमा, जिसका आका ने इल्तजाम किया है, ये दोनों उस इत्क के मुनाफी हैं जिसका आका ने अपने ऊपर इल्तजाम किया है, यानी जिस इत्क का, जिसको उसने अपने ऊपर लाजिम किया था कि एक गुलाम मेरी तरफ से आजाद है, ये उसके मुनाफी हैं भाई। तो कहते हैं वल मकसूदानी युनाफियान इल्इत्क अल मुल्तज़मा, तो ये दोनों मकसूद जो हैं उस आजादी के मुनाफी हैं जिसका आका ने अपने ऊपर इल्तिजाम किया है। फतअय्यन लहुल आखर दलालतन, तो दलालतन दूसरा गुलाम जो है मुतअय्यन हो गया आजादी के लिए। वकदा इज़स्तौलदा इहदाहुमा लिल मानयैनी, और इसी तरह है मसला जब उम्मे वलद बनाया दो बांदियों में से एक को, लिल मानयैनी इन्हीं दो इल्लतों की वजह से। मैंने बताया था माना का लफ्ज फिका की किताबों में इल्लत और सबब के माना में आम इस्तेमाल होता है, तो यहां ये इल्लत या सबब के माना में कर लें। सूरत ये है, आका की दो बांदियां हैं, आका ने कहा तुम दोनों में से एक आजाद है। इहदाकुमा हुर्रतुन, तुम दोनों में से एक आजाद है। फिर उसने अभी बयान नहीं किया था, उससे पहले ही एक को उसने उम्मे वलद बना दिया। ये उम्मे वलद बनाना ये इस बात की दलील है कि ये इसे मौत तक नफा उठाना चाहता है, तो ये बयान बन जाएगा कि आजादी के लिए दूसरी बांदी मुतायन है भाई, वो दूसरी आजाद हो जाएगी। और नीस जब उम्मे वलद बना दिया तो उम्मे वलद को भी आजाद किया जा सकता है मरने से पहले, लेकिन वो कामिल इत्क नहीं है। और आका ने तो इहदा कुमा हुर्रतुन के जरिए कामिल इत्क का इरादा किया था, और कामिल इत्क जो है वो उम्मे वलद में तो नहीं हो सकता, मालूम हो दूसरी बांदी इता के लिए मुतायन हो गई भाई। तो कहते हैं वकदा इजस्ता उलद इहदा हुमा लिल मानयैनी, और इसी तरह है मसला जब आका ने उन दो में से एक को उम्मे वलद बना दिया लिल मानयैनी इन्हीं दो सबबों की वजह से, कि एक तो वो मौत तक उसे नफा उठाना चाहता है और दूसरा ये कि उम्मे वलद की आजादी कामिल आजादी नहीं है भाई। वला फर्क बैन अल बैअ सहीह वल फासिदी माल कब्जी व बिदूनिही, भाई एक है बैअ सहीह और एक है बैअ फासिद। बैअ सहीह जो है इसके अंदर ईजाब और कबूल करते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है, मबीए पर चाहे कब्जा करे या ना करे वो बात की बात है, लेकिन ईजाब और कबूल करते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन गया। आपकी जेब पर एक कलम लगा हुआ है, मैंने आपसे कहा मैंने एक कलम आपसे 100 रुपए का खरीद लिया, आपने कहा मुझे मंजूर है, अब फौरन मैं उस कलम का मालिक बन गया। कलम अगरचे आपकी जेब पर अभी भी लगा हुआ है लेकिन मुश्तरी उसका मालिक बन चुका है। जबकि एक है बैअ फासिद, बैअ फासिद वो है जिसके अंदर कोई शर्त लगा दी जाए जो मुक्तज़ा अक़द के खिलाफ हो। मसलन एक आदमी दूसरे शख्स को कहता है कि यह मकान मैं आपको 10 लाख रुपए में बेचता हूं, लेकिन शर्त ये है एक महीने बाद मैं खाली करूंगा, मैं एक महीना इसमें रहूंगा भाई। तो याद रखो ये शर्त मुक्तज़ा अक़द के खिलाफ है, तो ये बैअ फासिद हो गई। बैअ का तो तकाजा है कि जैसे ही आपने चीज बेची है फौरन मुश्तरी के हवाले करें भाई। और बैअ फासिद याद रखो, बैअ फासिद का शरान कोई एतबार नहीं है, वो फासिद है, मोतबर ही नहीं है। तो बैअ फासिद के अंदर मुश्तरी मबीए का मालिक ईजाब और कबूल से नहीं बनता, क्योंकि वो बैअ मोतबर ही नहीं। हां मुश्तरी जब बाय की रजामंदी से मबीए पर कब्जा कर लेगा बैअ फासिद में, तो फिर मुश्तरी उसका मालिक बन जाएगा। एक आदमी ने दूसरे से बैअ फासिद कर ली तो इस बैअ का कोई एतबार नहीं, मुश्तरी उस मबीए का भी मालिक नहीं, लेकिन जब बाय की रजामंदी से मुश्तरी उस मबीए पर कब्जा कर लेगा तो अब ये मुश्तरी इस मबीए का मालिक बन गया। लेकिन इस बैअ का तोड़ना जरूरी है, ये बैअ फासिद है, दोनों गुनाहगार होंगे अगर इसको नहीं तोड़ेंगे। तो मालूम हुआ बैअ फासिद के अंदर कब्जा होगा तो फिर मुश्तरी मालिक बनेगा, वैसे मालिक नहीं बनेगा। अब आगे साहिब हिदाया फरमाते हैं वला फर्क बैन अल बैअ सहीह वल फासिदी माल कब्जी व बिदूनिही, कि कोई फर्क नहीं है बैअ सही का और बैअ फासिद का, माल कब्जी व बिदूनिही चाहे कब्जे के साथ हो या बगैर कब्जे के। ये माल कब्जी व बिदूनिही इसका ताल्लुक बैअ फासिद के साथ है, क्योंकि बैअ सही में तो कब्जे की बात ही नहीं है, वो तो इजाब और कबूल करते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है। हां बैअ फासिद के अंदर जब कब्जा करेगा तब मालिक बनेगा। तो आका ने अपने दो गुलामों को कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है, और फिर आका ने उन दोनों में से एक को बेच दिया। चाहे बेचना बेय सही के तरीके पर हो और चाहे बेय फासिद के तरीके पर हो, और चाहे बेय फासिद के बाद मुश्तरी मबिया पर कब्जा करे या न करे, तमाम सूरतों का यही हुक्म है कि दूसरा गुलाम आजादी के लिए मुतय्यन हो जाएगा। क्योंकि आका जब इसके बेचने का इरादा कर रहा है, मालूम हुआ इसके अंदर उसने अपनी मिल्कियत बाकी रखी है, जब ही बेच रहा है। अगर इसकी आजादी का इरादा किया होता फिर तो ये ममलूक नहीं था, फिर तो इसको बेच नहीं सकता था भाई। तो कहते हैं वला फर्का बैन अल बैय सही हिवल फासिदी, और कोई फर्क नहीं है बैय सही और बैय फासिद के दरमियान, माल कब्जी व बिदूनी ही, और ये बैय फासिद चाहे कब्जे के साथ हो या बगैर कब्जे के हो, वल मुतलकी व बिशर्त अल खियारी, और चाहे ये बैय मुतलक हो या खियार शर्त के साथ हो। आपने पढ़ा है बाज़ औक़ात बैय की जाती है खियार शर्त के साथ। एक आदमी आपके पास आया कि यह गाड़ी मुझे आप फरोख्त कर दें, तो आप कहते हैं नहीं ये मैं फरोख्त नहीं करना चाहता, तो वो कहता है भाई आप अपने साथियों से भी मशवरा कर लीजिएगा लेकिन फिलहाल मेरे साथ बैक कर लें, आपको दो दिन तक इख्तियार है, आप बैक को फसख करना चाहें तो फसख कर सकते हैं। तो आप उसके साथ बैक कर लेते हैं और आपने खियार शर्त रख लिया कि मैं दो दिन के अंदर अपने साथियों से मशवरा करूंगा, अगर मैंने फसख करना हुई बै तो मैं फसख कर दूंगा, और अगर दो दिन में आपने बै फसख ना की तो वह बै लाजिम हो जाएगी। तो बै खियार शर्त के साथ भी हो सकती है और बै मुतलक भी हो सकती है, यानी बगैर खियार शर्त के भी। तो साहिब हिदाया आपको बतला रहे हैं कि ऊपर मतन के अंदर मुतलक बै का जिक्र आया था, फबा अहदहुमा, तो उसने इन दोनों गुलामों में से एक को बेच दिया, मतन के अंदर आया था, तो वहां बै मुतलक जिक्र है, वो बै सही को भी शामिल है, बै फासिद को भी शामिल है, वो बै मुतलक को भी शामिल है और बै बिखियारी शर्त को भी शामिल है भाई। तो फिर तर्जमा देख लीजिए, वला फर्का बैन अल बैय सही हिवल फासिदी, और कोई फर्क नहीं है बैय सही और फासिद के दरमियान, माल कब्जी व बिदूनी ही, चाहे बैय फासिद कब्जे के साथ हो या बगैर कब्जे के, वल मुतलकी व बिशर्त अल खियारी लि अहद अल मुताकिदैनी, और कोई फर्क नहीं है बैय मुतलक में और वो बैय जो खियार शर्त के साथ हो, लि अहद अल मुताकिदैनी, अकद करने वालों में से किसी एक के लिए, यानी उसके लिए खियार शर्त हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लि इतलाक जवाब अल किताबी, किताब का जवाब मुतलक होने की वजह से कि किताब में यानी मतन के अंदर मसला मुतलकन जिक्र है, मतन में क्या आया फबा अहदहुमा, तो यह मुतलकन जिक्र है, तो ये बै सही को भी शामिल है, फासिद को भी शामिल है, और चाहे खियार शर्त के साथ बै हो उसको भी शामिल है भाई। ये माना है लितला की जवाब इल किताबी, किताब के जवाब के मुतलक होने की वजह से, वल माना मा कुल ना, और सबब वो है जो हमने जिक्र कर दिया। मालूम हो कि जब वो बेच रहा है तो बेचने के बाद तो वो इसको आजाद नहीं कर सकता भाई। वल अर्ज़ु अलल बैय मुल्हक़ुन बिही फिल महफूज़ अन अबी यूसुफ़ रहिमहुल्लाह। अच्छा भाई, ये तो था बेचने का मामला, अगर दो गुलामों में से एक को बेचेगा तो दूसरा आजादी के लिए मुतय्यन हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ कोई शख्स भाव ताव करता है अपने गुलाम का, बेचा नहीं है, बेचने के लिए पेश कर दिया कि मैं ये गुलाम बेचना चाहता हूं, और फिर किसी से भाव ताव किया, कीमत पर बहस की, लेकिन बैय ना हो सकी भाई, तो याद रखो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से बाज़ फुकहा ने रिवायत की है कि हमने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह को यह फरमाते हुए सुना कि अगर भाव ताव भी करेगा तो यह भी बयान बन जाएगा। मालूम हुआ दूसरा गुलाम आजाद है, यह जिसका भाव ताव कर रहा है यह आजाद नहीं, क्योंकि इसका बेचने का इरादा ही बतला रहा है, इस गुलाम में इसने अपनी मिल्कियत बाकी रखी है भाई। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से बाज़ फुकहा ने यह रिवायत नकल की है, लेकिन यह रिवायत उनसे महफूज और मस्मूआ है, सुनी गई है, अगरचे लिखी नहीं गई जी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जो मसाइल दर्ज फरमाए तो उन्होंने इसको लिखा नहीं है, लेकिन अलबत्ता बाज़ फुकहा फरमाते हमने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से यह सुना भाई। तो कहते हैं वल अर्ज़ु अलल बैय, और बैय पर पेश करना यानी भाव ताव करना गुलाम का, मुलहकुन बिही, यह भी बैय के साथ मुलहक है, इसका भी बैय वाला ही हुक्म है, फिल महफूज अन अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, उस कौल के अंदर जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से महफूज है यानी मस्मूअ है, उनसे सुना गया है। तो इमाम यूसुफ हमला से ऐसा सुना गया है, अलबत्ता मकतूब नहीं है भाई। वल्ही बतुवत तस्लीम व सदकत व तस्लीम बी मंजिलतिल बैई, और इसी तरह हिबा करना भाई, आप जानते हैं हिबा किसी को तोहफा देना, और हिबा ताम नहीं होता, कामिल नहीं होता जब तक दूसरा शख्स इस पर कब्जा ना कर ले, जब वो कब्जा करेगा तब मालिक बनेगा, वैसे मालिक नहीं। इसी तरह जब सदका किया जाए तो जब तक फकीर उस सदके पर कब्जा नहीं करेगा वो मालिक नहीं, वो मालिक नहीं। तो फरमाते हैं वल हिबत व तस्लीमो, और इसी तरह हिबा करना किसी को, व तस्लीम और सुपुर्द करना कि वो उस पर कब्जा कर ले, व सदकत व तस्लीमो, और इसी तरह सदका करना व तस्लीम और फकीर के सुपुर्द कर देना उस चीज को, भी मंजिलतिल बैअ, ये भी किसके दर्जे में है, बैअ के दर्जे में है, लिअन्नहु तमलीकुन, क्योंकि ये भी तमलीक है, उसको मालिक बनाया जा रहा है
जी।
तो लिहाजा जो बैअ का हुक्म था वही हिबा और सदका का भी हुक्म है
जी।
जब एक गुलाम को वो बेच रहा है मालूम हुआ दूसरा आजादी के लिए मुतय्यन हो गया। इसी तरह इन दो गुलामों में से एक को वो सदका करता है किसी को या हिबा करता है तो दूसरा गुलाम आजादी के लिए मुतय्यन हो जाएगा, क्योंकि हिबा और सदका अपनी ममलूक चीज में किया जाता है, मालूम हुआ इस गुलाम के अंदर उसने अपनी मिल्कियत बाकी रखी है और दूसरे की आजादी का इरादा किया था, तो आका का यह फेल बयान बन जाएगा
जी।
आका का यह फेल बयान बन जाएगा। और याद रखो यहां पर आया वल हिबत व तस्लीमो, हिबा और सुपुर्द करना, इसी तरह सदका और तस्लीम यानी सुपुर्द करना। लेकिन फुकहा फरमाते हैं कि यह जो तस्लीम को हिबा और सदका के साथ जिक्र किया गया यह बतौर ताकीद के है, यह बतौर ताकीद के है। अगर सुपुर्द ना भी करे, किसी आदमी को कहे ये वाला गुलाम मैंने आपको हिबा कर दिया, या किसी फकीर को कहे कि ये वाला गुलाम मैंने सदका के तौर पर आपको दे दिया, तो सिर्फ कहा है, अभी उस दूसरे ने कब्जा नहीं किया, लेकिन इसका कहना बतला रहा है कि इसने इस गुलाम के अंदर अपनी मिल्कियत बाकी रखी है। तो हिबा और सदका में तस्लीम जरूरी नहीं है, सिर्फ यहां उसको ताकीद के तौर पर जिक्र कर दिया, क्योंकि सुपुर्द करने से हिबा पक्का हो जाता है, इसी तरह सदका भी सुपुर्द करने से पक्का हो जाता है, ताम हो जाता है। तो सिर्फ हिबा करे तस्लीम न भी करे, और सिर्फ सदका करे तस्लीम न भी करे, फिर भी यही हुक्म है कि दूसरा गुलाम आजादी के लिए मुतय्यन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल हिबतु व तस्लीम, और हिबा करना और सुपुर्द करना, व सदकतु व तस्लीम, और सदका करना और सुपुर्द करना, भी मंजिलतिल बैई, ये भी बै के दर्जे में है, लिअन्नहु तमलीकुन, क्योंकि ये भी तमलीक है, मालिक बनाना है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।